जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृपया सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन सुदर्शन जय 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
निताई गौर प्रेमानंदी श्री अलालनाथ धाम की श्री जगन्नाथ पुरी धाम की श्री गोवर्धन धाम की त्रिचंद्र सरोवर की निताई गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इस अलालनाथ क्षेत्र में आकर मुझे आपके बीच में बैठने का मौका देने के लिए, और मेरे सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों को वैष्णवों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैं कुछ इस धाम के विषय में कहने का प्रयास करूँ। सबसे पहले आज कौन सी तिथि है? गोपाष्टमी तो कल हो गई, आज कार्तिक शुद्ध नवमी तिथि है जिसको अक्षय नवमी कहते हैं वृंदावन धाम में। और आज के तिथि में सारे ब्रजवासी लोग मथुरा वृंदावन की जॉइंट परिक्रमा करते हैं। सुनो, मथुरा वृंदावन की जॉइंट परिक्रमा लगभग 50-60 किलोमीटर की होती है, तो आज वृंदावन और मथुरा में बड़ी धूमधाम से लोग चलते रहते हैं। सुबह शुरू करते हैं, 5 बजे रात तक चलते रहते हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, मोटरसाइकिल चलना भी मुश्किल है। तो यही तिथि बहुत प्रसिद्ध है, सब लोगों को विनती है कि अपना दूरध्वनि यंत्र जो है उसको बंद रखो, दूर रखो और बंद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है पूरे ब्रज में, तो परिक्रमा में बहुत सारे आंवले के वृक्ष आते हैं, उसको परिक्रमा करते 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 ये लोग आगे जाते हैं, और आज के दिन से आंवला ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। आज उनकी पूजन करते कई लोग भोग लगाते हैं, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। सबसे पहला जो वृक्ष प्रकट हुआ सृष्टि में वो आंवले का वृक्ष है, उसका पूजन होता है, और कुछ लोग वहीं पर भोजन बनाते हैं उसके नीचे, और वहीं भोग लगाते हैं, वहीं पूजन करते हैं, तो वहीं ग्रहण भी करते हैं, उसका बड़ा महात्म्य है। सब लोग नहीं कर पाते, हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में भी आंवले के वृक्ष है, कम से कम 6 वृद्ध से लाए हुए हैं, उनका भी आज पूजन होता है, होगा। और आंवले के वृक्ष का जो जन्म है वो इसी तिथि के 6 दिन बाद, यानी या चतुर्दशी के दिन, कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी के दिन आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ था, उसका आविर्भाव दिवस है। हरि बोल। तो हम लोग अभी अलालनाथ आए हैं, तो अलालनाथ की कथा शुरू करने के पहले एक छोटी सी कथा बता देता हूँ, क्योंकि मैं भूलने की संभावना है उसको। यहीं से कुछ दूरी पर इसी क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है बेंटापुर, और ये बेंटापुर जो है वो रामानंद राय की जन्मस्थली है। और भवानंद राय भी उसी के पास रहते थे। भवानंद राय जो थे वो पांडु के अवतार थे, पांडव महाभारत के, और उनके 5 पुत्र थे, उसमें से 1 पुत्र थे रामानंद राय, जो अर्जुन के अवतार भी है और विशाखा देवी के भी अवतार है। कृष्ण की राधा रानी के सखी विशाखा देवी, उनका भी अवतार है उनके अंदर, और अर्जुन जो पांडवों के बीच में, उनके भी अवतार है। तो रामानंद रायपुरी का वहाँ पर निवास स्थान है, रामानंद राय रामानंद भवन, ऐसे बहुत सुंदर निवास है। और उनके परिवार के जो वंशज है वो भी अभी वहाँ रहते हैं, बहुत अच्छे, फ्रेंडली है, बहुत वेलकमिंग है। उनके घर में बहुत प्राचीन वस्तुएं हैं, थोड़ा आवाज़ कम करो। उनके घर में राय रामानंद का भुर्ज पत्र पर लिखा हुआ श्रीमद् भागवत है, पूरा ऐसे इकट्ठा करके उसको खड़ा करके रखा है एक शोकेस में, उसको चंदन कुमकुम करके उसकी पूजा होती है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है वो, और हमारा जो भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर है ना, जो अभी सब पुराने ग्रंथों को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा है, उसका भी नंबर है उसके अंदर, जो उसको अभी डिजिटाइज करेंगे और उनका ग्रंथ जो है वो प्रसिद्ध करेंगे। उसके बाद में रामानंद राय जो थे वो गवर्नर थे, राजा प्रताप रुद्र के नियंत्रण में, वो शासन में वो गवर्नर थे, तो उनके पास तलवार भी है उनकी वहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि क्षत्रिय है ना वो, तलवार भी है, और साथ में एक बहुत सुंदर प्राचीन तरीके की स्याही की बोतल है। हमको पता है बचपन से स्याही की बोतल मतलब क्या, कांच की इतनी सी बोतल, उस समय में बहुत अष्ट धातु से बनी हुई एक दौत है उधर, स्याही की बोतल, और एक बहुत ही सुंदर, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा एक टाक है, टाक यानी पेन, उसमें डुबाते हैं कलम, हाँ डुबाते हैं और लिखते हैं, डुबाते हैं और लिखते हैं, इतना सुंदर है वो। तो ये सब उन्होंने एक जगह पर अच्छी तरह से संभाल के रखा है, और उन्हीं के निवास स्थान के सामने मंदिर है, और उसमें राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु ऐसे सामने में बैठे हुए हैं और संवाद कर रहे हैं। कौन सा संवाद कर रहे हैं, जो कोबूर में गोदावरी के किनारे हुआ था, उस संवाद के स्मृति में वो विग्रह वहाँ पर बनाया गया है, लेकिन अभी तक उसका प्रतिष्ठापना नहीं हुई है, इसलिए वो दोनों विग्रह ऐसे बंद करके कपड़े में ढक के रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों में मंदिर का जीर्णोद्धार और विग्रहों की स्थापना भी हो जाएगी। तो ये हुआ राय रामानंद का क्षेत्र। राय रामानंद का भी बहुत शासन में अधिकार था जब वो थे यहाँ पर, राजा प्रताप रुद्र के शासन में उनका भी बहुत पोजिशन था। तो वो तो वैसे नीचे से यानी साउथ इंडिया से आए थे, आंध्र प्रदेश से, कोवूर धाम के जगह से, लेकिन महाप्रभु उनको लेकर आए यहाँ पर, और एक बहुत सुंदर बात है उसमें, महाप्रभु जी ने उनको वहाँ पर संवाद किया, और प्रयोजन का जो हमारा तत्व है, प्रयोजन तत्व, फाइनल तत्व, संबंध अभिधेय प्रयोजन में जो लास्ट तत्व है, उसका बहुत लंबी चर्चा हुई, श्रीमद चैतन्य चरितामृत में वो चर्चा आती है। उसके बाद में उन्होंने कहा राय रामानंद आप आ जाओ हमारे साथ, लीव एवरीथिंग एंड कम। तो जब वो पुरी में आए तो राजा प्रताप रुद्र को तो चैतन्य महाप्रभु संवाद करने का मौका नहीं दे रहे थे, बार बार कह रहे थे अगर उनकी बात दोबारा करोगे तो मैं पुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो उनको तो बार बार प्रयास करने के बाद, वो तो यजमान भी थे उनके, वो सबका रहने की खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे थे, फिर भी राय रामानंद को महाप्रभु ने अपनाया और राजा प्रताप रुद्र को अवसर नहीं दिया मिलने का। तो ये जब प्रताप रुद्र महाराज को पता चला, तो साधारण तौर पर क्या होता है, अरे मैं पगार देता हूँ और उसको इतनी कृपा मिल रही है, मैं तो राजा हूँ, सब कुछ करने वाला, मुझे देख भी नहीं रहे, ऐसा ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन राजा प्रताप रुद्र इससे महान भक्त थे, उन्होंने कहा कि आप इतने भाग्यवान हो, इतने भाग्यवान हो, एक प्रकार से महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार उनको रिजाइन करना जरूरी था, क्योंकि तो जॉब तो नहीं करेंगे ना, महाप्रभु के साथ में रहेंगे तो शासन का काम तो नहीं करेंगे, तो पगार बंद ना। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मैं डबल पगार दूंगा और आप महाप्रभु की सेवा में रहो, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो था उसको भूल जाइए, अभी जो महाप्रभु जो कहेंगे वही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा और उनके साथ रहेंगे आप, लेकिन आपको मैं दुगनी तनख्वाह दूंगा। ये है वैष्णव, इसको वैष्णव कहते हैं। तो राय रामानंद का जो जगन्नाथपुरी के मंदिर में और विभाग में शासन में अधिकार था, उसमें उन्होंने कई कार्य किए हैं। तो उसके थोड़े से आगे एक जगह है जिसका नाम है माधवी देवी समाधि। ये जो माधवी देवी है ये शिकी माही थी और उसके भाई, इन दोनों की बहन थी, और महाप्रभु चैतन्य कहते थे कि मेरे ढाई क्या कहते हैं पार्षद हैं, 2.5 एसोसिएट्स, उसमें से माधवी देवी हाफ एसोसिएट, और दोनों भाई जो हैं वो दो से 2.5। तो वो माधवी देवी की सेवा क्या थी? माधवी देवी देखो, एक जगन्नाथपुरी में एक शास्त्र है जिसका नाम है माडला पांजी या मांजाला पांजी। तो स्वयं जगन्नाथ भगवान ने डिक्टेट किया हुआ है, वो थोड़ा सा वैदिक शास्त्रों से हटकर है, अलग है, लेकिन प्रमाणित है, क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान ने स्वयं दिया हुआ है। और जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है बहुत सुंदर, बंद रहता है हमेशा वो, उसके अंदर वो जमीन से लेकर सीलिंग तक ऐसे स्टैक किए हुए भुर्ज पत्रों का एक कलेक्शन है, और वो शास्त्र है उनका, और वो केवल एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है। कौन है व्यक्ति? वो चीफ पुजारी ऑफ जगन्नाथ, वही उसको पढ़ सकता है, उसी को उसमें प्रवेश है। और उसको भी ऐसा गोल चंदन कुमकुम लगा के उसकी पूजा होती है, और कभी कभी वो आके उसको रेफर करता है, और कुछ कुछ बातें लीक भी हो गई है उसमें, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल और रहस्यमय और गुप्त शास्त्र है। लेकिन उसमें से कुछ बातें ऐसी है कि जैसे उसमें लिखा हुआ है कि यथावकाश कलयुग में रूसीय देश यानी रशिया, वहां से भक्त आएंगे और उनके साथ जगन्नाथ जी रशिया चले जाएंगे, ऐसे लिखा है उसके अंदर। वो स्वयं भी हमको बताए हुए हैं कई बार और हम देख रहे हैं ना, जैसे देखो पहले रशिया दे, रशिया में तो वो था ना आयरन कर्टन, मतलब किसी को वहां पर कुछ भी करने का धार्मिक रूप में कोई अधिकार नहीं था। वो केजीबी घूमती थी उनके पीछे गन लेके, अरेस्ट करती थी, जिंदगी भर पता चलता नहीं था कि वो कहां गए और क्या हो गया उनका। लेकिन अचानक महाप्रभु की कृपा से वो आयरन चेन जो है, वो कर्टन जो है फट गया चेन भी टूट गया, और बहुत सारे देश बन गए, और धर्म जो है वो खुला हो गया। एक साथ 40 मंदिरों का निर्माण चल रहा था उस समय, और मॉस्को में एक भव्य मंदिर अभी भी है, बन रहा है, और भी प्रगति हो रही है, और लाखों लाखों में वहां पर भक्त बने हैं। एक रशिया देश में अगर आप एक कोने से आपको दूसरे कोने जाना है तो फ्लाइट से 12 घंटे लगते हैं, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इफ यू वांट टू गो, लाइक फ्रॉम इंडिया कैसे कन्याकुमारी से अगर जम्मू कश्मीर जाना है तो 4 घंटे लगेंगे या 5 घंटे लगेंगे, वैसे 12 घंटे लगते हैं। और फेस्टिवल में लोग 12 घंटे की फ्लाइट पकड़ के मॉस्को में 10,000-15,000 की संख्या में सत्संग में आते हैं। ये आज की स्थिति है, जब इंद्रदुम्न महाराज और बीबी गोविंद महाराज और बहुत सारे महाराज वहाँ पर फेस्टिवल करते हैं तो 15,000-20,000 लोगों का तंबू लगता है। हमको लगता होगा कि हमारा ही 10,000 लोगों का वर्ल्ड से सबसे बड़ा होगा, नहीं, रशिया में इससे बड़ा लगता है। और 15 दिन तक चलता है वो, खाना पीना रहना स्टॉल, बहुत भव्य अरेंजमेंट होता है। तो इस प्रकार से रशिया देश में भक्ति का परम संचार हो रहा है, वो देखकर लगता है कि ये बात भी सच हो सकती है। एनीवेज, तो ये सब मैंने इसलिए बताया कि वो जो कहाँ से निकली बात, ये हाँ वो ग्रंथ, तो वो ग्रंथ जो है, हाँ तो वो ग्रंथ में सप्लीमेंट एडेंडम और जरूरी बातें लिखने का काम माधवी देवी दासी माधवी देवी का था, यहाँ से बात निकली थी वो। उनकी ये सेवा थी कि उनको ये अधिकार दिया गया था, क्योंकि वो जन्म से उड़िया थी ना, यहाँ की थी वो, तो चीफ पुजारियों की तरफ से उनको भी अधिकार दिया था कि उसमें आप लिख सकते हो, तो उसका भी उनका भी उसमें सहभाग है। उसको क्या कहते हैं ना, व्हाट यू कॉल दैट एडेंडम, व्हाट यू राइट सप्लीमेंट, तो होता है ना अभी हमारी घटना भी कैसे होती है देश में, अभी घटना बना के रखी लेकिन एक एक कायदा अमेंडमेंट उसको एक एक कायदा उसको पास करके उसमें जोड़ देते हैं तो बोनाफाइड हो जाता है, वैसे उसकी सेवा थी। तो उसकी भी समाधि वहां पर है उनके घर के पास, और सिखी माइती का बहुत सुंदर सुंदर लीला है चैतन्य महाप्रभु साहब। तो ये हुआ बेंटापुर की लीला। अभी अलालनाथ जो है ये बहुत ही विशेष, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ना एसोटेरिक, बहुत रसमय रहस्यमय स्थान है ये। इसका एक बाह्य स्वरूप है, इसका एक अंतर्गत स्वरूप है। बाह्य स्वरूप यह है कि यहाँ पर 4 भुजा वाले नारायण भगवान विराजमान है, और आंतरिक स्वरूप है कि वो 4 भुजा वाले भगवान विष्णु नहीं है, वो कृष्ण है, इसकी कहानी बताऊंगा आपको मैं। वैसे भौगोलिक दृष्टि से ये जगन्नाथपुरी से 8 कोस दूर है, 14 मील और 24 किलोमीटर जगन्नाथपुरी से है। यही अंतर पूरी गोवर्धन परिक्रमा का भी है। अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे चल के लंबी वाली, एक होती है छोटी वाली, एक होती है लंबी वाली और एक होती है दीर्घ परिक्रमा। छोटी वाली ब्रजवासी करते हैं राधा कुंड से मानसी गंगा दानघाटी ऐसे करके छोटी सी करते हैं ब्रजवासी करते हैं उसको, और हम गौड़िया सब वो 22 किलोमीटर वाली जो पूछड़ी का लोटा भी घूम के आते हैं फिर राधा कुंड को कवर करते हैं। एक दीर्घ वाली सनातन गोस्वामी करते थे जिसमें पेठा गांव चंद्र सरोवर वो ऐसा एक ऑफशूट है और वो कवर करके चलते थे 40 किलोमीटर डेली 70 साल की उम्र तक वो चलते रहे। तो ये जो अंतर है 24 किलोमीटर का ये बड़ी वाली परिक्रमा से मिलता जुलता है, इसका भी एक कनेक्शन है इस लीला में। तो इस क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने तपस्या की सृष्टि के निर्माण के समय पहले एकदम, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय लाइट गई हरे कृष्णा। वो किधर है स्पीकर आपका? कोई बात नहीं आप लोग
ना कोई बोले नहीं
माला माला हाला में जी का माला है
मैं यहाँ पर 3 बार आया हूँ अभी तक, ये हर टाइम की लीला है। और मुझे उसकी आदत है क्योंकि ब्रज में भी ऐसे चलते रहते हैं, जहाँ पर भी कथा होती है बीच में से कोई
भगवान का प्रसाद थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे।
आप रखो ना कथा में व्यवधान मत करो,
थोड़ा
कथा के बीच में नहीं आना चाहिए आप,
कथा के बाद। हरे कृष्ण।
तो क्या कर रहा था मैं? हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग सावधानी से सुनिए क्योंकि आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पता नहीं मुझे। तो भगवान नारायण जो है वो ब्रह्मा जी की तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और उनको ध्वनि दर्शन दिया, यानी दर्शन आंखों से नहीं दिया, कानों से सुन सकते हैं ऐसे आवाज में कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक ही शिला में 4 भुजा वाली मेरी मूर्ति बनाओ, 4 आर्म, इसमें शंख चक्र पद्म गदा होना चाहिए, छाती पर कौस्तुभ मणि होना चाहिए। देखो ये जो वर्णन मैं कर रहा हूं ना इसको आप इससे आपको भगवान के विग्रह पर चिंतन करने का एक अवसर प्राप्त होता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि, सर पर स्वर्ण मुकुट होना चाहिए, गले में नील कमलों की माला होनी चाहिए और एक और माला भी होनी चाहिए, इसका नाम है गजमणि माला, इसको कहते हैं एलिफेंट पर्ल्स। मुझे देखना है अभी, रिसर्च करना है उसको कैसा होता है, लेकिन वो माला जो है वो अलालनाथ के बॉडी पर है, इनबिल्ट पत्थर में ही है। नील कमल की माला, गजमणि की माला और यज्ञोपवीत यानी ब्राह्मण थ्रेड होना चाहिए, अंगुली में डायमंड का रिंग होना चाहिए और कमर में पीताम्बर होना चाहिए और पैरों में घुंघरू होने चाहिए। ऐसा भगवान ने पूरा विस्तार में वर्णन दिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पर्वत पर जहां बैठकर तपस्या की उसी में से एक शिला में से अपने हाथ से ये विग्रह बनाया है जिसका आपने दर्शन किया है, और उन्होंने कहा कि मेरे पैरों के पास चरणों के पास में गरुड़देव की छोटी मूर्ति भी होनी चाहिए। कितने लोगों ने देखी? हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है। पहले कानों से दर्शन कीजिए फिर जाकर आंखों से कीजिए, क्योंकि कानों से करेंगे तो आंखों को समझ में आएगा देखना क्या है। अभी अच्छा हुआ आपने दर्शन नहीं किया, बताता हूँ आपको मैं। सबसे नीचे पैरों में अभी तो बहुत तुलसी और फूल रखे रहते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार आया था तो मुझे उन्होंने निकाल के दिखाया था, बहुत सुंदर घुंघरू हैं। आज शायद कठिन होगा वो दिखाना। उसके राइट साइड में, राइट लेग के बाजू में गरुड़ जी बैठे हुए हैं। अभी आप ऊपर जाएंगे ना तो दोनों तरफ दो देवियां खड़ी हैं, वो है रुक्मिणी और सत्यभामा। ये भी प्रमाण देती है कि ये विष्णु के पार्षद नहीं हैं, ये कृष्ण के पत्नियां हैं। उसके ऊपर ऊपर जाएंगे, दोनों तरफ ऐसे ऊपर जाएंगे भगवान के शरीर में, तो ललिता और विशाखा का छोटा विग्रह, छोटे छोटे विग्रह हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो राइट हैंड में, भगवान के राइट हैंड में चक्र है और चक्र के ऊपर शिव जी की छोटी सी मूर्ति है। ऐसा चक्र पकड़ा ना, ऐसे चक्र पकड़ा है तो उसके ऊपर शिव जी की छोटी सी मूर्ति है। अभी लेफ्ट में जाएंगे ना तो लेफ्ट में ललिता भी ललिता ललिता राइट साइड में है, विशाखा लेफ्ट साइड में है, उसके ऊपर शंख पकड़ा हुआ है ऐसे, और शंख के ऊपर ब्रह्मा जी की मूर्ति है, और भगवान के शीश के ऊपर जो मुकुट है उसके ऊपर एक अमृत कलश है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, और अमृत कलश को गार्ड करने के लिए दो सिंह वहां पर बैठे हुए हैं। ये भगवान के शरीर विग्रह के अंदर है सब कुछ, और ये जो पूरा भगवान का विग्रह है वैसे ही लॉन्जिट्यूडिनल रेक्टेंगल है, हाँ आयताकृति कहते हैं मराठी में उसको। उसके बाहर दो देवियां हैं, एक लक्ष्मी देवी है जो भगवान के लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में सरस्वती देवी है, वो भगवान के विग्रह के अलग वहां पर विराजमान है। ये पूरा दर्शन है कंप्लीट। तो अभी आप जाएंगे तो पता नहीं आपको कितना दिखेगा, लेकिन आप कम से कम आपको पता है कि क्या देखना है और किधर देखना है। यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ के सब पंडा बताते रहते हैं कि ये जगन्नाथपुरी जो है वो शंख क्षेत्र है, और कौन से क्षेत्र यहाँ पर है, चक्र क्षेत्र भी है, पद्म क्षेत्र भी है, और गदा क्षेत्र भी है। चक्र क्षेत्र कोणार्क है और गदा क्षेत्र कटक है, और एक जगह मैं नाम भूलता हूँ उसका, जाजपुर। जाजपुर में कौन सा है, चौथा वाला मेरे ख्याल से पद्म क्षेत्र होगा। इस पूरे क्षेत्र में जगन्नाथ जी का आधिपत्य है, और यहाँ पर जहां जहां खुदाई करते आप, आपको या तो हनुमान जी का विग्रह मिलेगा पुराना पत्थर में बनाया हुआ, नरसिंहदेव का विग्रह मिलेगा, वराहदेव का विग्रह मिलेगा, और शिवलिंग मिलेंगे। ये सब मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के दर्शन में आप जाओगे ना तो इधर इसी मंदिर में जब मैं 2009 में आया था तब खुदाई में बहुत बड़ा लक्ष्मी का विग्रह मिला था, जो कम से कम इतना बड़ा है चौड़ाई में और हमसे ऊंचा 8 फीट का विग्रह है।
हरे कृष्णा, ये बगैर माइक के बोल रहे हैं तो आपको साइलेंस रखना है प्लीज।
आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो यहाँ पर लक्ष्मी देवी का विग्रह उत्पन्न हुआ था, प्राप्त हुआ था जमीन की खुदाई में, और उसके साथ साथ चार दो नवराधेव के विग्रह, दो नरसिंहदेव के विग्रह, एक गणपति का विग्रह भी प्राप्त हुआ था, वो लक्ष्मी देवी के पिलर में विराजमान है। फिर यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने काशी विश्वनाथ महादेव का भी स्थापना किया है, जो आप मंदिर में आते हैं लेफ्ट टर्न यू टर्न लेंगे तो आपको दर्शन होगा। उधर भी पत्थर में बनाया हुआ नवग्रह का विग्रह टॉप में है, और साइड में कार्तिकेय विग्रह, राइट में गणेश विग्रह, नीचे नंदी विग्रह, नीचे भृंगी देव विग्रह, और नंदी बैल के रूप में, ये सारे विग्रह जो है वो सब कुछ जमीन से मिले हुए हैं, और आप उसकी प्राचीनता को देख सकते हैं। तो ये है जगन्नाथपुरी का महात्म्य। यहाँ पर जगह जगह नरसिंह भगवान छुपे हुए हैं, परादेव छुपे हुए हैं, हनुमान जी छुपे हुए हैं, शिवलिंग छुपे हुए हैं, ऐसा ये बहुत अद्भुत धाम है। जैसे मुझे अभी याद आती है कि श्रीरंगम के भगवान जो है ना, उनका पूरा शरीर शालिग्राम शिलाओं से बना हुआ है, कंप्लीट बॉडी इज मेड ऑफ शालिग्राम शिला। कभी कभी जब उसका सफाई करते वक्त उनका चर्म का एक टुकड़ा गिरता है तो दर्शन होता है। एनीवेज, सो तो भगवान ने जब ये विग्रह प्रकट हुआ तो भगवान बड़े आराम से यहाँ पर रहे, ब्रह्मा जी ने उनका स्थापना की, और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा क्योंकि आपने यहाँ पर तपस्या की है इसलिए इस पर्वत का नाम मैं ब्रह्मगिरी रखता हूँ। ऐसे भगवान ने इसका नाम रखा ब्रह्मगिरी। और हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति सिद्धांत, इनके अनुभूति साक्षात्कार के अनुसार ये ब्रह्मगिरी साक्षात गोवर्धन पर्वत है, और यहाँ पर राधा कुंड भी है थोड़ी दूर, जो भी उन्होंने निर्देश किया कि ये कुंड जो है ये अलालनाथ जी का वो चंदन यात्रा का कुंड है, जहाँ पर हर साल जहाँ पर नरेंद्र सरोवर में जगन्नाथ जी चंदन की यात्रा करते हैं, चंदन यात्रा नौका विहार, वैसे यहाँ पर भी अलालनाथ की नौका विहार चंदन यात्रा होती है, वो विहार करने वाली जगह जो है वो ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने कहा कि ये राधा कुंड है। हरि बोल। अब ये बात निकली है तो मैं आपको वो कथा बता देता हूँ। वो ये है कि एक बार मुकुंद से भगवान थोड़े नाराज हो गए, मुकुंद है ना उनका भक्त, तो अद्वैताचार्य को पता चला कि भगवान मुकुंद पे नाराज है, तो उन्होंने पूछा क्यों नाराज है आप उनके ऊपर। तो भगवान ने कहा कि मुकुंद जो है वो चतुर्भुज नारायण के प्रति आकर्षित है। तो अद्वैताचार्य ने कहा ओके, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमारा जो मार्ग है वो द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण की पूजा का मार्ग है, इसलिए हम ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते चार भुजा वाले कृष्ण का आकर्षित होना कृष्ण की ओर। ये महाप्रभु की लीला है, इसको आप गलत मत समझना। तो अद्वैताचार्य को लगा कि अरे अगर चैतन्य महाप्रभु मुकुंद पर नाराज है तो उसका उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने फिर अपना काम शुरू किया। भक्तों का काम कौन सा होता है? सब लोगों का उद्धार करना, सब लोग का तारण होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु जी को बताया, महाप्रभु जी अभी आप उन पर नाराज मत होइए, कृपा कीजिए, आप अपने दो चरण कमल उनके शीश पर रखिए ताकि उनको वो दिव्य अनुभूति हो द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण के प्रति आकर्षित होने की। तो अद्वैत आचार्य के विनती पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने दो चरण कमल मुकुंद के शीश पर रखे। हरि बोल। और उस समय स्वतः है स्वाभाविकता मुकुंद के मन में द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण के प्रति आकर्षण निर्माण हुआ। इतना चैतन्य महाप्रभु स्पेसिफिक थे, फिर भी वो यहां पर चतुर्भुज विष्णु को देखने के लिए क्यों आते थे? एक लॉजिकल प्रश्न होता है ना, स्वयं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार आ रहे हैं, हमको तो एक ही कथा पता है जनरली, लेकिन जब आए ना यहां पर पहली बार पुरी में, तो आते वक्त रास्ते में भी यहां पर आए थे, यहां पर रुके भी थे रात को, फिर भक्तों को मिले भी और यहां से गए हुए हैं। फिर हर अनवसर में आते थे, जब चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ जी का मंदिर बंद होता था तो 15 दिन यहां समय बिताते थे। जब साउथ इंडिया यहां से गए पुरी से तो भी यहां पर आके एक रात रुके थे, हजारों भक्तों को मिले और नेक्स्ट डे यहां से साउथ इंडिया गए। जब लौट के आए तो भी एक दिन यहां रुके, सबको मिले और यहां से पुरी गए। यहां पर उनका कई बार निवास है और वो केवल एक्सीडेंटल नहीं है, उनके मन में यहां के प्रति बहुत आकर्षण था। तो उसकी कथा ऐसी है कि ओके, पहली कथा बताता हूँ, वो ये है कि बहुत सारी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ की जो कथा है ना वो थोड़ी भेलपुरी की तरह है, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं लेकिन एंड में जो रिजल्ट है वो स्वादिष्ट होता है। इसलिए कथा कौन सी शुरू होगी, बीच में कौन सी आएगी, खत्म होगी, उसका आप चिंता मत करना, सब सुनते रहना बस। तो वसंत ऋतु में चैतन्य कृष्ण भगवान ने रासलीला आरंभ की। शरद की लीला तो इस समय हुई रासलीला, वसंत में चैतन्य चैत्र महीने के पूर्णिमा में रासलीला आरंभ हुई। तो उस समय बलराम जी भागवत के आए आकर्षित होकर देखने के लिए, लेकिन वो गोवर्धन के ऊपर चढ़े क्योंकि वो जगह तो था, वो गोवर्धन में था क्षेत्र जहां पर उन्होंने वसंत ऋतु में रास आरंभ किया। तो जब बलराम जी आए तो उनको लगा कि मैं बहुत लंबा हूं और मैं खड़ा हो गया तो उनको वहां से दिखेगा रास करते समय, तो उनको संकोच होगा कि बड़े भाई देख रहे तो लीला को बंद कर देंगे, तो मुझे दिखना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ढोक दिया। ढोक देने का मतलब है दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम की पोजीशन में बैठे जैसे और लीला देख रहे हैं। जब झुके भाव विभोर होकर तो उनका मुकुट गिरा और एक शिला में, शिला को उन्होंने क्या किया, मेल्ट हो गई, शिला पिघल गई और मुकुट उसमें घुस गया। तो वो वहां पर बनी है मुकुट शिला बलराम जी की, वहां पर है, हम लोग वहां जा नहीं सकते क्योंकि वो गोवर्धन के ऊपर है। और ये मूर्ति भी जो थी अभी जो है वो ढोका यानी दंडवत के पोजीशन में वहां पर वो स्तंभित हो गए, स्तब्ध विकार हुआ उनको, यानी ही बिकेम स्टंड लाइक अ वुड, लकड़ी की तरह वो एकदम कड़क हो गए भाव से, वो अष्ट विकार में से एक विकार है। तो आज भी उस जगह का नाम है ढोका दाऊजी मंदिर, जो गोविंद कुंड के बाद में एक गुलाबी रंग का मंदिर राइट में आता है जहां पर हम लोग जा नहीं सकते हैं, उसके अंदर वो दंडवत के पोजिशन में बलराम जी की मूर्ति है। बोलो बलराम जी महाराज की। तो फिर वहां पर रास आरंभ हुआ और एज यूजुअल भगवान ने अनेक रूप धारण किए और हर एक गोपी के साथ में नृत्य करने लगे। नेचुरली जैसे पहले हुआ, अभी भी गोपियों को थोड़ा सा लगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ और सबको छोड़कर मेरे ही साथ डांस कर रहे हैं। तो भगवान ने फिर इसकी थोड़ी कथा ऐसी है कि रासलीला होती रही होती रही होती रही, इतना आनंद रहा इतना आनंद रहा कि सबके शरीर में से अश्रु और स्वेद दोनों बहने लगे, दिव्य जल वो इकट्ठा होकर एक पौंड बना, एक कुंड बना। अच्छा, तो चंद्र देवता और बाकी सारे देवता ये सारी लीलाओं को आकाश में देखते रहते हैं, आकाश से तो क्या हुआ कि ये सभी लोग बहुत प्रेरित हो गए, चंद्र भगवान इतने प्रेरित हो गए कि उन्होंने अपने अमृत जो अपने पास रखते हैं ना कस्टोडी के रूप में, अमृत कलश में से कुछ अमृत डाल दे बिंदु, कि ये स्थान कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, अमर होना चाहिए। और रासलीला आगे बढ़ी आगे बढ़ी, इतना आनंद हुआ इतना आनंद हुआ कि भाव विभोर होकर चंद्र देवता इसमें पिघल गए पूरे, तो कुंड का ही नाम बना चंद्र सरोवर। उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए क्योंकि उनको पता चला सब गोपियां थोड़ा थोड़ा गर्व कर रही हैं। इस ऐसे भगवान अनंत बार रास में से अंतर्धान हो गए, एक बार नहीं अनंत बार अनंत जगह पर, लेकिन इसमें से उनको लगा कि थोड़ा हास प्रयास भी किया जाए, इसलिए वो रास मंडल की जगह से आगे जाकर, रास मंडल चंद्र सरोवर के पास था, अभी भी उसकी उसका स्थान है वहां पर, विशाल अष्टकोणी चंद्रकुंड है, चंद्र सरोवर है। थोड़ा आगे गए एक गांव में जिसका नाम क्या है, प्रविष्ट वन, बताइए क्या नाम है, क्योंकि भगवान ने उसमें प्रवेश किया था गोवर्धन को उठाने के लिए। और उसके आगे एक गुफा है उसका नाम है प्रविष्ट गुफा, अब समझ गए होंगे ना आप, उस गुफा में प्रवेश करके जमीन के नीचे जाकर भगवान ने अपने बाएं हाथ पे गोवर्धन को धारण किया था और फिर उंगली पर धारण किया था, इसलिए उस गुफा का नाम है प्रविष्ट गुफा। जो वहां पर गुफा है उसके बाजू में ये खड़े हो गए, चार भुजा वाले नारायण बनकर भगवान कृष्ण जो है वो खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए ना, उनके पैरों के तले चरणों में कमल, दिव्य कमल प्रकट हो गया और उनके चारों तरफ विशाल क्षीर सागर कुंड तैयार हो गया। इस लीला के क्षीर सागर कुंड, दूध का सागर है ना, एक एक सागर दूध का है, सात सागर में से एक सागर दूध का है, जिसमें हमारे विष्णु भगवान क्षीर उदक शाही के रूप में शयन करते हैं। जो लोकल जो वैकुंठ है श्वेत द्वीप उसको कहते हैं, और वही भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सबके हृदय में प्रवेश करते हैं, वो भगवान की हम बात कर रहे हैं जो इस ब्रह्मांड के अंदर ही वो वैकुंठ है। वो जो धाम है क्षीर सागर धाम, वो भगवान ने वहाँ प्रकट किया और खड़े हो गए चार भुजा धारण करके, शंख चक्र पद्म गदा लिए। फिर गोपियाँ है ना ढूंढ रही हैं भगवान, अरे हमने बेकार में गर्व किया, और सब गाते गाते रोते रोते ढूंढते ढूंढते वृक्षों को बेलियों को सबको पुकारते पुकारते आ रहे हैं, और अचानक यहाँ पहुँचे तो शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने पूरी गोवर्धन की परिक्रमा की ढूंढते ढूंढते, कहाँ गए कृष्ण। इसीलिए वो 24 किलोमीटर का अंतर इम्पोर्टेंट है, जो गोवर्धन की परिक्रमा का भी है और पूरी से यहाँ का डिस्टेंस भी 24 किलोमीटर है। तो फिर उनको अंत में इस जगह पर विष्णु का दर्शन हुआ, तो सबने ओम नमो नारायणाय वंदन किया, और अगर हम होते तो बहुत सारा प्रार्थना करते, पुरुष सूक्त गाते, कुछ कुछ करते, उन्होंने ओम नमो नारायणाय कहा और कहा कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है कहीं। इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनके माइंड के टॉप पर है, जो उनकी एगनी है, जो कष्ट है, तो विष्णु भगवान उनका प्रेम देकर बहुत भाव विभोर हो गए। कृष्ण जो छुप रहे हैं ना, ही इज डिस्गाइजिंग एंड हाइडिंग बिहाइंड विष्णु फॉर्म, तो अपना एक हाथ उठा के बोले इस तरफ गए हैं, चार में से एक हाथ उठाया बोला इस तरफ गए, तो एक भी क्षण ना रुकते हुए सब भागे उस स्थान के लिए। और उसके बाद में राधा रानी वहां पर आई, सबके एंड में उनके मुख के पास एक भंवरा घूम रहा था गोल गोल, और वो भंवरे से बात कर रही थी कृष्ण के रूप में, यानी कृष्ण समझकर कि आप कितने दुष्ट हो, कितने क्रूर हो, आप बहुत निर्दय हो, आप पाषाण हृदय हो, आप क्यों प्रेम करते हो। फिर प्रेम की बातें भी करते थे, आपके बिना मैं व्याकुल हूँ, फिर ताने मारती थी, फिर क्रोध करके कुछ गालियाँ बकती थी, ऐसे करके ऐसा ही विचित्र प्रेम वैचित्र्य प्रकट हो रहा था। और वो बात करते 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 वो विष्णु के पास आई, अभी वो काले भवरे से बात भी कर रही है, विष्णु भी उनको देख रहे हैं, विष्णु देखकर यानी कृष्ण भगवान बहुत ऐसे भाव विभोर हो गए, कैसा प्रेम है ये। और फिर राधा रानी ने भी प्रणाम किया और पूछा आपने कहीं मेरे कृष्ण को देखा है, इस बार क्या हुआ। इस बार राधा रानी के प्रेम विरह प्रेम शक्ति के प्रभाव से कृष्ण के नियंत्रण के बाहर, कृष्ण को पता नहीं था क्या हो रहा है, कृष्ण के नियंत्रण के बाहर, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर उनकी दो भुजाएं नष्ट हो गई, गायब हो गई, और जो बची दो भुजाएं थी सामने वाली उसमें से जो पद्म और गदा थी वो भी गायब हो गए, और दोनों हाथ कृष्ण के नियंत्रण के बाहर अपने आप ऐसे हो गए और मुरली प्रकट हुई और मुरली बजाने लगे। हरी बोल, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐश्वर्य प्रकट करने का भगवान ने प्रयास किया वैकुंठ का रूप दिखाकर, लेकिन प्रेम माधुर्य ने उसको परास्त कर दिया। राधा रानी के माधुर्य भाव ने ऐश्वर्य भाव को इतना चितपट कर दिया कि ऐश्वर्य भाव बचा ही नहीं, नो लवलेश। तो कृष्ण दूप विभुजा वाले अपने आप हो गए। देखो यहां पर एक श्लोक लिखा है, भुज चतुष्टायम क्वापी नर्मणा दर्शयन्नापि वृंदावनेश्वरी प्रेमना। वृंदावनेश्वरी राधा के प्रेम के कारण द्विभुजा क्रियते हरि, अपने आप वो दो भुजा वाले बन गए। तो इस प्रकार से कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। अभी ये लीला एक जगह पर रखिए, आप आपने सुन लिया अभी इसको। फिर हमारे जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं वो यहाँ पर आए, हाँ, और वो आए 29 मार्च 1918 इस दिन संन्यास लेने के बाद आए। 3 जुलाई को यहाँ पहुँचे संन्यास के बाद 23 डिवोटी के साथ, और उन्होंने यहाँ पर अन्न प्रसाद पाया पुजारी की तरफ से। रूपा विलास दास का एक किताब है उनका, 7th गोस्वामी आई थिंक, बहुत सुंदर किताब है, उसमें वर्णन आता है। फिर जब वो आए यहाँ पर तो यहाँ पर वो बेहोश हो गए। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पर आते ही ठाकुर भक्ति सिद्धांत भाव विभोर होकर बेहोश हो गए। वो कहाँ चले गए, कैसे गए, किधर गए, किसी को पता नहीं चला। 3 दिन तक गायब रहे वो। बस 3 दिन के बाद में वो होश में आए, तो उनको भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। बहुत देर से पता चला कि मैं किस स्थान पर हूँ। उन्होंने बाद में पता चला कि वो राधा कुंड जो अभी कहते हैं उसके किनारे पे वो बेहोशी से होश में आए थे, भक्तों को वही मिले। तो उस भाव विभोर अवस्था में उनको एक बहुत दिव्य अनुभूति हुई, जो आज केवल गौड़ीय वैष्णवों के पास है ये अनुभूति उनकी, साक्षात्कार। और ये जो उनका अंडरस्टैंडिंग है अंतरंग भाव, वो ये है कि उनको पता चला कि ये स्थान प्रविष्ट वन से अलग नहीं है, ये स्थान साक्षात पेठा गांव है जो गोवर्धन के अंदर है। तो इन्होंने ये अनुभूति की, यही गोवर्धन है, यही वृंदावन है, यही पेठा गांव है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां से भाग के आए ना, जब 15 दिन भगवान का अनवसर काल शुरू हुआ तो दर्शन नहीं हुआ, तो बड़े व्याकुल हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो वो वहां से वैसे ही ढूंढते ढूंढते 24 किलोमीटर भाग भाग के आए, और यहां उन्हें अलालनाथ का दर्शन हुआ। लेकिन उनको अलालनाथ का चतुर्भुज दर्शन नहीं हुआ, उनको दिखाई पड़ा कि 2 भुजा में मुरली पकड़ के वो मुरली बजा रहे हैं त्रिभंग अवस्था में। 2 बातें उसके अंदर, 2 हाथ वाले हैं एक बात है, दूसरी बात है मुरली बजा रहे हैं, तीसरी बात है कि त्रिभंग रूप में खड़े हैं, त्रिभंग कृष्ण के रूप में खड़े। इसलिए जब महाप्रभु चैतन्य यहाँ पर आए तो उन्होंने जो दंडवत किया है, जिस शिला पर दंडवत किया है वो शिला पिघल गई। आज तक के शास्त्र के इतिहास में संशोधन में कभी भी ऐसी कोई प्रक्रिया निकली नहीं है जिसमें से पत्थर पिघल सकता है। सोना पिघलता है, लोहा पिघलता है, सारा मेटल पिघलता है, रस बनता है उसका, वो सब देखा है हमने, लेकिन पत्थर किसी भी भौतिक प्रक्रिया से पिघलता नहीं है, वो केवल दिव्य प्रेम भाव से पिघलता है। वृंदावन में भी भगवान मुरली बजाते हैं तो उनके पैरों के स्पर्श से पत्थर पिघल जाते हैं, जहाँ जहाँ बैठे उठे चले जमीन पर सब जगह पर पैरों के चिन्ह हैं, खास करके पहाड़ों में चिन्ह हैं, उन चिन्ह उनको कहते हैं चरण पहाड़ी। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इतने प्रेम भाव में थे क्योंकि वो जगन्नाथ के विरह में तड़प रहे थे। तो जब वो दंडवत किया उन्होंने साष्टांग स अष्ट अंग, तो जहाँ जहाँ वो स्पर्श हुआ ना, सर का स्पर्श हुआ, कंधे का हुआ, कोने का हुआ, घुटने का हुआ, एडी का हुआ, जहाँ जहाँ कमर का हुआ, वो सब जगह पर वो पत्थर पिघल गया और एक छोटा छोटा पडल यानी कुआं जैसा बन गया उसके अंदर, उसमें उनका स्वेद भी इकट्ठा हुआ और महाप्रभु जी उसमें पड़े रहे। उसको कहते हैं प्रेमशिला, वो प्रेमशिला यहाँ प्रकट है। तो महाप्रभु जी ने यहाँ पर कभी भी अलालनाथ को 4 भुजा वाले भगवान के रूप में देखा नहीं है, 2 भुजा वाले भगवान के रूप में देखा है। तो बाह्य रूप से लोग सब उनको चतुर्भुज नारायण के रूप में देखते हैं, उसी भाव में पूजन करते हैं, लेकिन अंतरंग भाव उनका यह है कि वो कृष्ण है। उसका साइंटिफिक प्रूफ भी यह है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप दर्शन करेंगे ना तो तो राइट हैंड में जनरली विष्णु भगवान कमल पकड़ते हैं डंडी से, ये ऐसे ही अभय हस्त मुद्रा में है। कोई भी विष्णु की मूर्ति अभय हस्त मुद्रा में नहीं होती, वो कमल पकड़ के रखते हैं, नीचे गदा रखते हैं, पीछे राइट हैंड में चक्र, लेफ्ट हैंड में शंख, ये बदलते रहता है लेकिन ऐसे है। लेकिन यहाँ के विष्णु भगवान जो है वो अभय हस्त मुद्रा में है और कमल उनके इधर पंजे में है छोटा सा। अभय हस्त्रा में अस्त में जो मुद्रा होने वाले विग्रह होते हैं उनको कृष्ण मानते हैं, विष्णु नहीं मानते हैं। हमारे अस्पताल में भी हनुमान जी हमेशा सदैव विरासन में रहते हैं गदा पहन के, हमारे अस्पताल में वो अभय मुद्रा में है, आशीर्वाद के भाव में है। जरूर दर्शन करने को आना, बहुत अद्भुत और दुर्लभ हनुमान जी हमारे हॉस्पिटल में है आशीर्वाद के भाव में। परम पूज्य राधानंद महाराज की इच्छा के अनुसार उनको वैसे बनाया गया था। तो ये अभय हस्त मुद्रा कृष्ण होने का प्रमाण देता है। और तो उसके बाद में क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने फिर उनको राधा कुंड किनारे में बहुत आराम करते थे कई बार वो। फिर उसके बाद उनको 1922 में वापस आए 3-4 साल के बाद, तो उनको लगा कि यहाँ पर एक गौड़िया मठ होना चाहिए, तो उन्होंने गौड़िया मठ बनाने का काम शुरू किया, उसको बनाया और उसको स्वयं ब्रह्म गौड़िया मठ नाम रखा। ये गौड़िया मठ की कोई ब्रांच नहीं थी, जैसे भगवान ने इस पर्वत को नाम दिया ब्रह्म पर्वत ब्रह्मगिरी, उसी तरह से चैतन्य ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने अपने मठ को नाम दिया ब्रह्म गौड़िया मठ। उसके बाद में 1929 में वो दोबारा आए यहाँ पर ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उस समय उन्होंने देखा कि ये जगन ये जो अलारनाथ का मंदिर है जो बीच में रामानुज संप्रदाय के जो विशेष और प्रसिद्ध भक्त हैं अलवार, उन्होंने इनका पूजन शुरू किया था, तो इसलिए उनका नाम पड़ा अलवार नाथ, अलवारों के नाथ के रूप में प्रसिद्ध हो गए वो। उसके बाद में ये मंदिर जीर्ण हुआ, तो 1929 में ठाकुर जी ने हमारे परम गुरुदेव ने सोचा कि इस पर जीर्णोद्धार भी किया जाए, तो उन्होंने यहाँ के जो महंत थे वो महंत के साथ में मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। उस समय की एक लोकवदंती है कि यहाँ के जो कर्मचारी है, कहीं के भी कर्मचारी बिल्डिंग बनाते समय बीड़ी पीते रहते हैं, लेकिन अभी तो रेडीमेड बीड़ी मिलती है, उस समय सब लोग अपने हाथ से बीड़ी बनाते थे, उसमें बहुत टाइम पास करते थे, तो उनको बहुत जल्दी उसको जीर्णोद्धार करना था, इसलिए ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने अपने हाथ से उनकी बीड़ियाँ बनाई और कहा कि टाइम पास मत करो, ये लो बीड़ी, क्योंकि आप पीने वाले हो, ऐसे भी पीने वाले हो। तो ये सेवा कार्य उन्होंने किया, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य, यानी सेवा के लिए क्या आवश्यक है उसको देखकर उन्होंने ये कार्य किया। 1930 में ये मंदिर पूरा हुआ। उस समय हार्मोनिस्ट नाम के मैगजीन जो ठाकुर भक्ति सिद्धांत निकालते थे उसमें परमानंद ब्रह्मचारी विद्यारत्न, ये यहाँ के लोकल पुजारी थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके बारे में कैसे मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। तो उसमें ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने क्या क्या किया, पार्श्व देवता स्थापन किए, वामन देव, नरसिंह भगवान, वरादेव के विग्रह स्थापन किए, ओके। उसके बाद में उन्होंने गेटवे बनाया, अभी का गेटवे बाद में बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक गेटवे बनाया, दो सिंह भी बनाए जिसको सिंह द्वार कहते हैं। और इस पूरा प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा खर्च आया, ह्यूज कॉस्ट, ₹128 1930 में इसको खर्च करने में ₹130 लगे, यानी आज के करोड़ों रुपए लगे होंगे। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट के इंचार्ज कौन थे, सिंहद्वार के, खास करके महंत गदाधर रामानुज दास और ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी, उन्होंने इनके जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद में 1929 काम चल रहा तभी, तो यहाँ के जो पुजारी थे अलारनाथ के, उनको एक स्वप्न आया। वो स्वप्न में क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत खुदाई होती रहती है, वो उसके लिए भी हो रही थी जीर्णोद्धार के लिए, तो उस खुदाई में उनको छोटी अलारनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने अपने मंदिर में रखी और पूजा शुरू किया। कुछ देर बाद उनको स्वप्न आया और स्वयं अलारनाथ उनके स्वप्न आकर बोलते हैं कि मुझे ठाकुर भक्ति सिद्धांत के हाथ से पूजन करवाने की इच्छा है मेरी, कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पूजा करें, जाओ उनको ढूंढो और मुझे देखे आओ उनको। तो उनका मठ तो बाजू में ही था, तो वो गए और पूछे कि ऐसे महाराज, तो उनको ने शिष्यों ने दिखाया, वहाँ पर भजन कुटी भी है उस मंदिर में, उस मंदिर में भजन कुटी है, तो वहां पर मिले।
तो प्रभु जी का जो है YouTube में आ रहा है, YouTube का लिंक मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, अगर किसी को YouTube में सुनना है तो YouTube में भी सुन सकते हैं। करंट वाला
हरी बोल, हरी बोल। तो उन्होंने ये विग्रह जो है ठाकुर भक्ति सिद्धांत को भेंट में दे दिया। पहले क्यों नहीं आया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। एको बंद करो, एको बंद करो, इसे डिस्टर्ब हो जाएगा। हरे कृष्णा, थोड़ा आगे रखो, एको बंद करो, एको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एको। हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आगे ले जाऊं। अभी आपको समझ में आया होगा कि आजकल के काल में, कलयुग काल में भगवान की कथा सुनना कितना कठिन है, इतना आसान नहीं है। हमारा थोड़ा साइड में, हमारा जो निश्चय शक्ति है वो बहुत बढ़ाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वैसे भी हमारे भक्ति के हम लोग दीक्षित है, भक्त है, सब कुछ है, फिर भी हमारे जीवन में भी कथा बहुत रेयरली आती है। मे बी 8 दिन में एक बार आती है, 4 दिन में एक बार आती है, पता नहीं महीने में एक बार आती है। इतना बड़ा सत्संग तो 1 साल के बाद में आता है। तो हमें इसकी दुर्लभता आपको समझना चाहिए कि भगवान की कथा जो है बहुत दुर्लभ है, सबके लिए उपलब्ध है फिर भी बहुत दुर्लभ है। हाँ, तो मैं कहा था तो उन्होंने वो विग्रह जो है वो ठाकुर भक्ति सिद्धांत को भेंट में दिए। मत रखा उसको, कोई बात, मैं पकड़ना प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इसको दूर ले गया, दूर लेके जाओ, दूर
दूर ले जाओ। हाँ दूर ले जाओ।
हरे कृष्णा। तो ये विग्रह जो है वो गौड़िया मठ के मंदिर में है, छोटे से विग्रह है, वो आपको पुजारी आगे आगे दिखाएंगे। उसके बाद में 1931 में ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने इस मंदिर में गोपी गोपीनाथ विग्रह स्थापन किए। ब्रह्मा गौड़िया मठ के अंदर 3 विग्रह है, एक बड़े गौरांग महाप्रभु है, उनका नाम है गौड़ियानाथ। बाजू में सामले रंग के कृष्ण है और गोरे रंग की राधा रानी है, उनका नाम है गोपी गोपीनाथ। और नीचे छोटे राधा कृष्ण के विग्रह हैं। आप लोगों की परीक्षा है कि आपका ध्यान कहाँ पर है। डोंट लुक बिहाइंड, लिसन। तो पीछे जाके करो ना, जो करना है उसको। स्टॉप दैट, आई डोंट,
भाई साहब ये कॉल डिस्टर्ब कर रहा है,
इसको बंद करो आप,
बंद ही कर दो,
नो नीड।
एक ही बात है।
हरे कृष्णा, बंद बंद। राधे राधे, लाइट दिला दे। तो कि राधा रानी सब करती है। हाँ अभी देखो आप। दोबारा बताता हूँ, बड़े विग्रह सावले कृष्णा और गोरी राधा रानी, वो गोपी गोपीनाथ हैं। उनके बाजू में बड़े गौरांग महाप्रभु है, वो है गौड़िया नाथ। और नीचे छोटे राधा कृष्ण है, वो है गंधर्वी का गिरिधारी। और उसी लेवल पे है हलालनाथ भगवान, छोटे से, जो पहले यहाँ पर उत्सव मूर्ति के रूप में सेवा पाते थे, अभी वहाँ पर भी आकर बैठे हुए हैं। उनकी ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने सेवा की है, पर्सनल सेवा। उसके पश्चात ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने, सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, एक भविष्यवाणी की, बहुत अमर भविष्यवाणी। वो ये है कि हम लोगों को भगवान जगन्नाथ को हवाई जहाज में बिठाकर ईस्ट बोर्न लंदन विदेश में लेके जाना चाहिए। नंबर 2, जब वो वहां पहुंचेंगे तो अलालनाथ, गौड़ियानाथ और गोपीनाथ तीनों वहां प्रकट हो जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात बताया कि हमें देश विदेशों में, गांव गांव में, सब जगह पर चैतन्य महाप्रभु का विग्रह स्थापन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मनुष्य जाति के लिए कोई गति, कोई उद्धार नहीं हो सकता है। ये इंग्लिश में कहा था, इसलिए मैं इंग्लिश में दोबारा पढ़ के बताऊंगा। वी मस्ट टेक लॉर्ड जगन्नाथ बाय एरोप्लेन टू ईस्ट बोर्न लंडन। देयर अलालनाथ, गौड़ियानाथ एंड गोपीनाथ विल अपियर। वी मस्ट इंस्टॉल लॉर्ड चैतन्यस डीटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, अदरवाइज देयर विल बी नो होप ऑफ ऑस्पिशियसनेस फॉर ह्यूमन रेस इन द वर्ल्ड। समझ में आया सबको? ओके। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी का जो 100 वर्ष की वर्षगांठ हुई ना, सेंटेनियल प्रोग्राम, कौन से साल में हुई थी, कितने लोग इसमें थे विश्व में उस समय? 1996 में प्रभुपाद जी के जन्म शताब्दी वर्ष था। उस समय गौर गोविंद महाराज ने उसके पहले यह प्रकल्प बनाया था कि पूरे कॉम्प्लेक्स को जीर्णोद्धार किया जाए। कोई बात नहीं, लीव इट। क्योंकि जब उन्होंने ये जीर्णोद्धार किया तो उन्होंने 1996 प्रभुपाद जी के जन्मदिन के पहले ये सब कार्य पूरा किया। क्या क्या पूरा किया? एक बड़ा हॉल बनाया कीर्तन एवं प्रसाद के लिए, जो जैसे यहाँ पर है वैसे वहाँ पर एक और हॉल है जहाँ पर महालक्ष्मी जी विराजमान है, जहाँ पर वो प्रेमशिला है, जहाँ पर षडभुज भगवान चैतन्य महाप्रभु का षडभुज रूप का भी प्रतिष्ठापना की गई थी। वो राजा ने बनाया था जब शिला को स्थापन किया। शिला की भी कहानी ऐसी है कि जब वो शिला 1919 में यहाँ के उस समय के राजा ने प्रयासपूर्वक उसको लेकर मंदिर में रखा, कारण कलयुग के प्रभाव से जो पर्वत जो था ब्रह्मगिरी वो पूर्ण नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, और एक ही शिला बची है जो पर्वत की शिला है और प्रेम शिला भी है। तो बड़े प्रयासपूर्वक उसको उठाकर इस मंदिर में लाया गया और साथ साथ षडभुज गौरांग का विग्रह भी स्थापन किया गया, उसके सामने ही ये प्रेम शिला उपस्थित है। तो वो जो मंडप बनाया है वो गौर गोविंद महाराज के प्रयास से बना है। दूसरा, जो आज का जो गेट है वाइट रंग का बड़ा गेट, वो गौर गोविंद महाराज ने बनाया। उसके बाद उन्होंने एक नया डीटी किचन बनाया जहाँ पर ठाकुर जी के लिए भोग बनाने की व्यवस्था नई बनाई उन्होंने। और चौथी बात, धाम रक्षक जो शिव जी हैं इनका नाम काशी विश्वनाथ महादेव है, उनकी स्थापना भी उन्होंने की, जो मैंने पहले ही आपको बताया। तो इस प्रकार से ये हमारे गौरव की बात है कि हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, उन्होंने ये बहुत अद्भुत स्थान अद्भुत रहस्य के साथ प्रकट किया है। इन्होंने ही इमली तला में वो स्थान प्रकट किया जहाँ पर कृष्ण भगवान गौर वर्ण के बने, जहाँ पर सांवले रंग के कृष्ण गौर वर्ण के बने और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गोल्डन सांवले रंग के बने। इतने माइक मैंने आज तक किसी कथा में उपयोग नहीं किया, इतना ऑपुलेंस है, देखो चार चार माइक। हरे कृष्णा। अभी प्रश्न ही उठता है कि इसकी आवाज कहाँ से निकल रही है, सबको सुनाई पड़ना चाहिए, बस यही अपना पर्पज है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या कह रहा था मैं,
माइक के बारे में।
हाँ, तो इमली तला में भगवान गौरांग महाप्रभु गोरे सांवले रंग के बने थे, और जब कृष्ण सांवले रंग के थे वो गोरे रंग के बने थे। इस रहस्यमय जगह का भी क्या कहते हैं प्रादुर्भाव या प्रकटीकरण ठाकुर भक्ति सदान जी के कहने से हुआ था। वो चल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जगह मुझे चाहिए। सब लोग कहा इधर क्यों जगह ले रहे, तो उन्हें बताया कि ये वो स्थान है। इसका अर्थ ये हुआ कि ठाकुर भक्ति सिद्धांत को सब साक्षात्कार दर्शन के रूप में हुआ करता था, तभी वो कहते थे। उन्होंने उधर गोद्रुमा गए थे एक बार, वो गोद्रुम में नरसिंहपल्ली ना, वहाँ पर वो चल रहे थे तो बीच जंगल में उन्होंने कहा कि मुझे ये जगह चाहिए, कुछ 50 एकड़ की जगह थी। तो मालिक बोला प्रभाजी जंगल में क्यों जा रहे हैं आप, कौन आएगा दर्शन करने के लिए? नहीं, मेरी जिद है कि मुझे यही जगह चाहिए। बाद में पता चला कि वो समुद्र सेन समुद्र विहार स्थान था, भी उसकी लंबी कहानी है, लेकिन वो लुप्त हुआ स्थान, वहाँ पर कुछ कशे अवशेष गिरे थे खंभे वगैरह के, वो उन्होंने फिर पूरा मंदिर बनाया। स्वर्ण विहार नाम है उस स्थान का। ओके, तो फिर इस स्थान की दूसरी कथा भी है। थोड़ा सा आवाज़ कम करो, थोड़ा सा। कि 15 सेंचुरी में, इसके पहले की कहानी बताता हूं आपको, कि जब अलारनाथ भगवान की सेवा यहां पर हो रही थी तो श्री केतन नाम के एक पुजारी थे, उसको एक पुत्र था मधु नाम का। तो श्री केतन रोज उनकी सेवा करते थे, लेकिन जब एक दिन उनको कहीं जाना पड़ा काम से, तो उन्होंने मधु बालक को बुलाया और सब समझा दिया कि क्या करना है आपको, कैसे सेवा करनी है, कैसे भोग लगाना है। तो मधु ने कहा ठीक है मैं करूंगा, और उन्हें कहा कि आपको भगवान को विनती करनी है कि आप इसको खाओ। बालक को जितना समझ में आया उतना समझाया और वो चले गए बाहर। तो माता ने पूरा थाली बनाई और माता ने कहा मधु आ जाओ भगवान को भोग लगाओ। तो उन्होंने जैसे कहा वैसे मंत्र बोले और एंड में रिक्वेस्ट भी किया कि मैं खेलने जा रहा हूँ तब तक आप खा लो। तो वो खेल के आ गए पर्याप्त समय कि भोजन भी हो जाएगा। तो थाली वैसे के वैसे। तो उन्होंने कहा भगवान आपको मैंने कहा था आप खा लो, आपको और समय चाहिए तो मैं और खेल के आता हूँ, लेकिन खाना जरूर। और फिर खेलने गया, फिर वापस आए तो फिर वैसे थाली। फिर वो रोने लगा, उन्होंने कहा कि बाबा अभी बाबा और मैया डांटेंगे मुझे। तो रोने लगा भगवान आप अगर नहीं खाएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, आप कृपया इसको खाइए। कुछ याद आ रहा है आपको, रघुनंदन ठाकुर की कथा भी ऐसी ही है। तो फिर इसका प्रेम और वात्स क्या कहते हैं उसको, निरागस्ता निष्पाप उसका जो था ना इनोसेंस, उससे भगवान इतने प्रभावित हुए, भाव विभोर होकर वो विग्रह से बाहर आए और उन्हें पूरा प्रसाद, यहाँ पर तो रोटी बनती नहीं है, चावल अन्न बहुत सारे अन्न बनते हैं, दाल दालमा सब्जी और खीर सब खा लिया, चाट चाट के खाया। और मधु बहुत खुश हो गया, वो थाली लेकर अपने माँ को दिया। तो माँ पूछते वेर इज महाप्रसाद, तो माता कहती है कि माता को बताया कि ये तो भगवान ने खा लिया। उनका कहा मेरा लड़का थोड़ा सा उद्दंड हो रहा है अभी, खुद ने खाया होगा और भगवान का नाम बताया होगा, ये संस्कार अच्छे नहीं है, ठीक है उसको थोड़ा ठीक करूँगी मैं, अगले बार फिर दिया प्लेट। तो फिर वही बात हुई, वही रोना धोना, वही वेट करना, इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, और फिर खाली थाली लेकर आया। 3 दिन बीत गए, कितने भोग हो गए होंगे। और ये पुजारी का जो परिवार था ये केवल भगवान के भोग पर ही उनका जीवन चलता था, उनका अन्न का सोर्स यही था महाप्रसाद। 3 दिन ना बेटे ने कुछ खाया ना माँ ने कुछ खाया, पिताजी तो बाहर थे, और पिताजी लौट के आए तो माता ने सब वृत्तांत बताया कि 3 दिन में मैंने कुछ खाया नहीं है, इसने भी कुछ नहीं खाया है, और वो कहता है कि अलालनाथ ने सब खा लिया है। तो उसको श्रद्धा नहीं लगी, करे ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने कहा नहीं बाबा आपने कहा था ना, मैंने उनको बहुत विनती की तो उन्होंने खाया, मेरे सामने खाया। तो उनको लगा बच्चा तो बहुत ही बिगड़ गया है, क्या क्या स्टोरीज बना रहा है, खुद खा रहा है, चोरी कर रहा है, और ऊपर से इतनी इतनी बड़ी बड़ी कहानी वो भी भगवान के नाम से बना रहा है, सच अ ऑफेंस। उन्होंने कहा ठीक है अभी मैं आपको और एक थाली देता हूँ, मेरे सामने भोग लगाओ। तो ठीक है बोलो आए। उसके लिए बात बहुत सहज थी, पिता के लिए बहुत कठिन थी। पिताजी छुप गए और बालक को कहा भोग लगाओ। तो बालक ने भोग लगाया और कहा कि मेरे ऊपर लांछन दिया जा रहा है, मेरे ऊपर परीक्षा की जा रही है, भगवान आपको खाना है इसको, क्या करेंगे भगवान, तो प्रेम के दीवाने होते। तो वो ना ऐसे झुके, उस थाली में से खीर का गरम गरम जो क्या कहते हैं उसको कटोरी वो ले आ, और वो खाने जा ही रहे थे, उस समय ये जो श्री केतन था वो छलांग लगा के कूदा उनके ऊपर और हाथ पकड़ा उसका, ऐसे ऐसे पकड़ा, अभी गरम गरम पूरी भरी हुई खीर की कटोरी अगर होगी तो हिलेगी ना वो, तो गरम गरम खीर जो है ना वो बाहर पड़ी और भगवान के हाथ में गिरी और भगवान का हाथ जल गया। आज भी जो चक्र धारण किया हुआ हाथ है ना वो पूरा जला हुआ है, पत्थर के अंदर आपको पता चलेगा, बर्न्ड हैंड, गरम गरम खीर के गिरने से उनका हाथ जल गया। उस समय भगवान ने कहा हे क्या कहते हैं ओ मटेरियलिस्टिक पर्सन, ओ भौतिकतावादी दुनियादारी करने वाले व्यक्ति, आप जैसे अश्रद्धालु से मैं कभी भोग ग्रहण नहीं करता, मैं केवल प्रेम से अर्पण किया हुआ भोग ग्रहण करता हूं, मैं बहुत ही क्या कहते हैं क्रोधित हूं आपके विषय में। मैं आपको ये लोकवदंती है ये आगे व्हाट कॉल फोक टेल, उन्होंने शाप दिया कि श्री केतन तुम जैसे अश्रद्धालु लोगों पर मुझे बिल्कुल सेवा ग्रहण नहीं करनी है, तुम और तुम्हारा सारा वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा, केवल मधु बचेगा क्योंकि वो मेरा भक्त है, बाकी आप सब लोग स्वार्थी और मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो जिस पर आपको श्रद्धा नहीं है कि मैं प्रसाद पाता हूँ, इस पर आपको विश्वास नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे भगवान कहीं मूर्ति कोई खाती है क्या, अगर आप सब खा जाओगे तो हम लोग क्या खाएंगे। ऐसे उन्होंने कहा था भगवान को, इमेजिन। तो यथावकाश श्री केतन का पूरा वंश इस गांव से नष्ट हो गया और केवल मधु बचा और मधु का वंश अभी चल रहा है। तो ये यहाँ की कथा है। फिर अलवरनाथ आए, उन्होंने फिर यहाँ पर सेवा की, फिर वो भी चले गए, फिर ये भगवान की सेवा दुर्लक्षित हो गई। अभी आ गई, आ गया समय प्रताप रुद्र महाराज के पिताजी का, यानी पुरुषोत्तम देव का। वो है 15th century। वो राजा कपिलेंद्र देव के पुत्र थे, राजा पुरुषोत्तम देव, और उसकी भी एक लंबी कहानी कभी बताएंगे आपको। वो कांची में युद्ध करने जा रहे थे क्योंकि वहां पर थोड़ा सा उनका अपमान हुआ था, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो सेना लेकर जा रहे थे और यहां से गुजर रहे थे। तो यहां से जब गुजर रहे थे तो उनको आवाज आई जंगल में से, सुनो सुनो सुनो, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ और मेरा मेरी पूजा करो, बहुत दिनों से मेरी पूजा नहीं हो रही है, अगर तुम मेरी पूजा का जिम्मेदारी लोगे तो मैं तुमको विजय श्री का आशीर्वाद दूंगा। तो वहां पर उतरे, वो देखा तो जंगल की झाड़ी में छुपे हुए अलारनाथ का दर्शन हुआ, और उन्हें तुरंत जगन्नाथपुरी से 2 पुजारियों का व्यवस्था की और उनकी सेवा आरंभ की। आज भी इस मंदिर की जो सेवा है वो जगन्नाथ मंदिर के ही आधिपत्य में है, उसी समय से 15वीं सदी से आज तक वही मैनेजमेंट यहाँ पर भी सेवा करता है। और फिर वो युद्ध करने गए, कांची राज को उन्होंने हराया, विजय प्राप्त किया, और इसका कारण था कि अलालनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था। हरी बोल। अभी एक सुंदर कथा आती है, क्योंकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अनवसर काल में आते हैं, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अनवसर काल क्या होता है। एक उसकी कथा है कि माधवदास नाम के ब्राह्मण थे, भक्त थे भगवान के, पहले वृंदावन में थे, फिर वो जगन्नाथपुरी में आके बस गए। उस समय जगन्नाथपुरी का जो वातावरण था ना, वो पूरा जंगल 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 ही था, यहाँ तक कि महाप्रभु चैतन्य आए तभी भी जंगल था, क्योंकि आज जहाँ पर सिद्ध बकुल है ना, वो बड़ी दूर एकांत जंगल में स्थान था वो, इसलिए वहाँ पर रहने का इंतजाम किया गया। और यहाँ पर भी पूरा अभी जितने बिल्डिंग बने हैं सब जगह पूरा जंगल था, और समुद्र किनारा बहुत ही भयंकर एकांत स्थान था, वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता था, रात के समय तो इम्पॉसिबल था। तो ये माधवदास जो है वहाँ रहने लगा। एक दिन उसको दस्त लग गए, दस्त बहुत सामान्य शब्द है, उनको हो गया संग्रहणी, संग्रहणी का मतलब है कंटिन्यूअस लूज मोशंस, जो आदमी उठ ही नहीं पाएगा, उसके अंदर केवल दस्त ही करते रहेगा, फिर उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, फिर शुगर कम हो जाएगी, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएगा, लेकिन दस्त चलते रहेंगे। ऐसा भयंकर उसकी अवस्था हो गई, और रात के समय वो किनारे में, समुद्र किनारे में पड़ा हुआ है, और उसको होश ही नहीं है कितने दस्त निकल रहे हैं, वो किधर है, सब कुछ भूल गया, वो बेहोश हो गया। उस रात को एक बालक वहां पर आया और उसने माधवदास का ये जो संग्रहणी है वो साफ किया। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, चौथे दिन भी आया, थोड़ी बहुत सेवा होने के बाद में थोड़े थोड़े होश आए उनको, और पता चला कि कोई कुछ कर रहा है मेरे लिए, इसके वजह से मेरे होश आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, कौन हो आप, कौन हो, बताओ कौन हो। फिर बताया उन्होंने, मैं तो साधारण बालक हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो मैं आ गया। बोले, कौन आ सकता है इतने जंगल में, इतने बीच एकांत स्थान में, किसकी हिम्मत है रात को आने की यहाँ पर। फिर भी वो आते रहा आते रहा, तो और ज़्यादा होश आया, तो इसको अनुभूति हुई कि इतने बीच रात में जगन्नाथपुरी के समुद्र में एकांत स्थान में निर्जन स्थान में आने की हिम्मत किसकी हो सकती है बिना भगवान के। उसको अनुभूति हुई कि ये तो भगवान ही है। उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ भगवान, क्यों छुपा रहे अपने आप को और क्यों ये सेवा कर रहे हो, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे इतनी क्या कहते हैं उसको, घृणास्पद भी कह सकते हैं या तो उसको मिनियल, बहुत लोली सेवा कर रहे हो, ये सेवा तो कोई नहीं करता है माँ के अलावा, और आप कर रहे हो, कृपा करके मत करो, और आप कौन हो मुझे बताओ, कितना दिन छुपाओगे अपना रूप। तो ना 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 करते हुए ये भी चलता रहा कुछ समय के लिए। उसने कहा कि अभी मैं थोड़ा और अच्छा हो गया, उसने कहा कि मैं आपको हाथ लगा नहीं दूंगा। वो भागने लगा, भगवान उसके पीछे भाग रहे हैं, अभी बीमार है वो, कहा कि आप अपना रूप दिखाओ पहले आप। तो मजबूरी से भगवान ने अपना रूप दिखाया, वो बालक जो है वो जगन्नाथ में रूपांतरित हो गया, और माधवदास के चरणों में गिर गए। तब तक 15 दिन बीत चुके थे। फिर उनका कहा कि क्यों भगवान ऐसे कर रहे हैं आप, क्यों मुझे इतना शर्मिंदा कर रहे हैं आप, कृपया ये सेवा बंद कर दीजिए, मुझे मरने दीजिए, अगर मुझे मरना है तो मरने दीजिए। तो भगवान ने कहा, ऐसा है कि अभी आपकी मृत्यु नहीं है और 15 दिन बाकी है आपके, 15 दिन और आपको कष्ट होगा, उसके बाद में आपका कर्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा। तो ये कहते हैं आप तो भगवान हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो। भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता और नहीं करूंगा। तो फिर ये सिलसिला कब बंद होगा? आप मेरी आके सेवा कर रहे हैं और मुझे 15 दिन और जीना है, वो कष्ट सहना है, ये तो 10 का कष्ट है वो ठीक है, लेकिन आप सेवा कर रहे हो वो बड़ा कष्ट है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा एक ही चारा है, या तो 15 दिन आप जीते रहो और मैं करते रहूं, या तो कोई और आपके कर्म ले ले 15 दिन का, तो आप फ्री हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं इसलिए मैं ही आपका कर्म लेता हूँ। जगन्नाथ ने उसे भी कर्म ले लिए 15 दिन के, इसीलिए जगन्नाथ जी वहाँ 15 दिन बीमार पड़ते हैं। अनवसर काल का बैकग्राउंड ये है, एक बैकग्राउंड, अनेक बैकग्राउंड है इसके। तो उसी समय माधवदास का उद्धार हो गया, वो सीधे गोलोक धाम चले गए जगन्नाथ की कृपा से। और फिर जगन्नाथ जी 15 दिन बीमार पड़ते हैं, वो कर्म वो जो है भक्तों का वो सह रहे वो। तो ये अनवसर काल है, अभी देखो इसको पकड़ना जरा। इसमें एक रहस्य की बात ऐसी है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, मैं बताना चाहता हूँ आपको। थोड़ी प्रार्थना कीजिए, कभी कभी मेरा नोट सब गुम हो जाता है, मैं समझ में नहीं आता क्या करूँ। हाँ मिल गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर पेपर रखा हुआ है। तो एक जो मैंने एक उच्चारण किया था मांडला पांजी, इसको मांजाड़ा पांजी कहते हैं, वो जगन्नाथ जी का स्क्रिप्चर है, शास्त्र है। तो इसमें क्या लिखा है कि जगन्नाथ जी स्वयं गर्मी के मौसम में वैशाख में बहुत परेशान होते हैं गर्मी से, और राजा इंद्रधनु को बताते हैं, राजा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे चंदन लगाओ और नौका विहार कराओ। तो उस समय जगन्नाथ भगवान का नौका विहार लीला अक्षय तृतीया से आरंभ होती है। अक्षय तृतीया से यानी वैशाख शुद्ध तृतीया से ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तक, यानी 21 दिन ज्येष्ठ महीने के अष्टमी तक कैसे होती है? भगवान जगन्नाथ का उत्सव मूर्ति मदन गोपाल जी, लक्ष्मी सरस्वती एक पालकी में, दूसरे पालकी में दूसरे विग्रह अर्च विग्रह यानी विजय मूर्ति राम गोविंद, और पांच पालकियां पंच शिव जी, जो यहाँ के शिव जी प्रधान पांच शिव जी है जिनका दर्शन करना बहुत आवश्यक है, कपाल मोचन शिव जी, लोकनाथ शिव जी, मार्कंडेश्वर शिव जी और इंद्र नीलकंठेश्वर शिव जी और यमेश्वर महादेव, ये पांच पांडवों के स्वरूप भी है इसमें। यमेश्वर जो है वो युधिष्ठिर महाराज है और नीलकंठेश्वर सहदेव जी हैं, ये पांच जगह विराजमान है। तो ये पांचों पांच पालकी में बैठकर बड़े धूमधाम से बाकी दो पालकियों के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर से लेकर नरेंद्र सरोवर तक बड़े सजाए हुए रस्ते में निकलते हैं, जगह जगह भोजन और सब कुछ आरती स्वीकार करते करते वहाँ पहुँचते हैं। और उनका फिर वहाँ पहुँचने के बाद सातों पालकियों का स्वागत होता है, उनका पूजन होता है, भोग लगता है, उसके बाद नौका में विराजमान करके ये सारे लोग विहार करते रहते हैं, नौका विहार। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने भी एक बार छलांग लगाकर सब भक्तों के साथ में नौका विहार आनंद लिया था। 21 दिन हुए जो प्लान था, फिर भी जगन्नाथ जी कहते हैं राजा को, आई एम स्टिल फीलिंग हॉट, अभी भी मुझे गर्मी लग रही है। तो ये जो 21 दिन की नरेंद्र सरोवर की यात्रा हुई ना, चंदन यात्रा, उसको बाहरी चंदन यात्रा कहते हैं। अभी भी गर्मी लग रही है तो उन्होंने भीतरी चंदन यात्रा करने का प्लान किया। हर बार राजा जो है चीफ पुजारी सबके साथ मीटिंग कर रहे हैं, पहली बार भी किया था, अभी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी को शिफ्ट किया एक जगह पर जो केवल बाम्बू से बना हुआ कमरा है, पूरा पूरा अंधेरा, फुल क्वारंटाइन, एक ही दीपक घी का और एक डायमंड जिसके प्रकाश में एक ही पुजारी अंदर आएगा और उनका जो भी करना है वो करेगा। तो इस तरह से एक और जगह है उसके पास में, नरसिंह मंदिर देखा आपने जगन्नाथ के मंदिर के अंदर, एक फेमस उधर वो मुक्ति मंडप करके बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर पुजारी लोग बैठे रहते हैं ऐसे आराम से, उसके सामने ही नरसिंह भगवान मंदिर है, उसके बाजू में वो श्वेत जो रोहिणी कुंड है ना उसका कुआं है उसके बाजू में ही, वो बहुत फेमस नरसिंह भगवान है वो। उसके पीछे एक जगह है जिसका नाम है घटुवारी मंदिर, घटुवारी इसका अर्थ है घिसने की जगह, क्या घिसने की जगह, चंदन घिसने की जगह। तो वो घटुवारी मंदिर में एक ही परिवार है जो चंदन घिसता है हर साल पीढ़ी पीढ़ी जो भी जितना भी हजारों साल चल रहे हैं, ओके, हर दिन 2.5 किलो से लेकर 15 किलो तक चंदन घिसा जाता है और दिन भर लगातार भगवान को चंदन लगाया जाता है, 21 डेज ये चलता है। और उसके बाद में क्या होता है, भगवान वो जो परिवार है उसका नाम है घटुवारी सेवक, जो चंदन घिसाई करते हैं और भगवान को रोज चंदन अर्पण करते हैं। ये प्राइवेटली होता है, किसी को उधर एंट्री नहीं होती, बाकी पुजारी भी नहीं एंट्री करते, एक पुजारी खाली प्रवेश करता है। फिर उसके बाद भगवान फिर जगन्नाथ जी इंद्रदुन महाराज को बताते हैं, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। तभी वो वापस चिंतित होते हैं, अभी क्या करें, भगवान आप ही बताइए। तो भगवान ने कहा कि मुझे ओपन एयर में स्नान कराओ, मेरा स्नान मंडप बनाओ मंदिर से निकालकर और खुली जगह में मुझे स्नान कराओ। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में एक कुआं है, इसका नाम है शूना कुआं, गोल्डन वेल, और एक देवी का मंदिर उसके पास में ही है, आप पता कर सकते हैं, आज भी टाइम है, उसका नाम है शीतला देवी। वो शीतला देवी साल भर उस शूना कुआं जो बंद रहता है उसकी देखभाल करती है, और केवल आषाढ़ शुद्ध द्वितीया के दिन उसको खोलते हैं और उसमें से 108 कलश जो है वो जल निकाला जाता है। अब देखो उसका डिवीजन कैसा है, 35 कलश जो है वो भगवान जगन्नाथ को अर्पण किए जाते हैं ओपन स्नान, 33 कलश जो है वो बलराम जी को अर्पण किए जाते हैं, 22 कलश जो है वो बलराम जी को अर्पण किए जाते हैं, ये हो गए कितने हो गए 90 हो गए, और 18 कलश जो है वो चक्र के ऊपर अर्पण करते हैं। इस तरह से 108 कलश से सूर्योदय से सता समाप्त होने तक अभिषेक होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। फिर क्या होना है, जो ही होना है वही होना है, ऐसा कार्य करेंगे तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जो है ये सब बीमार पड़ जाते हैं, और फिर अनवसर काल आरंभ होता है। अनवसर काल जब आरंभ होता है तभी चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए हुए हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ, वो गरुड़ स्तंभ है, पहली बार जब आए थे ना तो एकदम पूरा बेहोश हो गए थे, बहुत बड़ी लीला हुई। उसके बाद निर्णय लिया कि अभी मैं बहुत पास नहीं जाऊंगा, दूर से गरुड़ स्तंभ में खड़ा रहूंगा और वहां से दर्शन करूंगा। तो खड़ा होकर जो स्तंभ को पकड़कर दर्शन कर रहे थे ना, तो भाव से जहां पर उंगलियां स्पर्श हुई ना, वो स्तंभ जो है वो पिघल गया। अभी वो तीन उंगलियों के स्थान है उधर, और जहां पर खड़े हैं वहां पर भी शिला पिघल गई है, चरण चिन्ह भी है शिला में और स्तंभ में भी उंगली के चिन्ह है। वहीं पर वो बुढ़िया उनके कंधे पर चढ़ी थी, भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु के इस कंधे पर पैर रखकर दर्शन कर रही थी। तो अनवसर काल में दर्शन बंद हो जाता है। इसका और एक कारण यह है कि साल भर जगन्नाथ भगवान भाई और बहन को लेकर दर्शन देते रहते हैं, कितने दिन, 345 डेज इन अ ईयर, और पत्नी के साथ में एकांत का समय नहीं मिलता है, वो खाली अपने किचन में काम करती रहती है और छप्पन भोग का व्यवस्था करती रहती है, लेकिन एकांत संग नहीं प्राप्त होता है। सारे पत्नियों का एक ही कंप्लेंट होता है, ही डज नॉट गिव मी टाइम। वो परंपरा अभी भी चलते आ रही है, वो टाइम देते नहीं, ये भी सच है, और टाइम कितना भी दिया फिर भी वो कंप्लेंट होती रहती है, दोनों बातें सच है। तो ये लक्ष्मी देवी के साथ एकांत करने का समय है, बीमारी का बहाना है लेकिन लक्ष्मी के साथ एकांत संग करते हैं। अभी ये 15 दिन का काल जो है कितना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ना सारे पांडव लोग जो है वो अपने बाल मुंडवा लेते हैं, नाखून भी काट लेते हैं, एक वस्त्र पहनते हैं सूती वस्त्र, और स्ट्रिक्ट सूतक बनाते हैं, दुखौटा यानी क्या कहते हैं उसको, मॉर्निंग इंग्लिश में हो गया ना, वो उसको दुखौटा कहते हैं, यानी दुख व्यक्त करते हैं। कोई मर जाता है ना कभी, तो हम उसको सूतक बनाते हैं ना, कोई उत्सव नहीं मनाते हैं, कोई घर में लाइट वाइट लगाते नहीं है, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छा खाते नहीं है, वैसे ये 15 दिन का सूतक बनाते हैं। कोई पवित्र कार्य नहीं होता है उसमें, कोई किसी का एंगेजमेंट है, शादी है, गृह प्रवेश है, कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करना है, कुछ काम नहीं होते। वो लोग बात भी नहीं करते हैं, अधिक से अधिक मौन रहते हैं दुखी होने के कारण, किसी के घर में जाकर किसी को मिलते भी नहीं है, नो विजिटिंग ईच अदर्स हाउस। 15 दिन तक उपवास रखते हैं, 119 प्रकार के सेवक है, 119 प्रकार के फैमिलीज है जगन्नाथ के, जो 119 प्रकार के विविध सेवाएं पीढ़ी पीढ़ी से करते रहते हैं। उनके प्रधान सेवक है राजा गजपति राजा, वो भी उपवास रखते हैं, वो भी मौन रखते हैं, वो भी सूतक रखते हैं। आपको पता होगा शायद उडुपी में, श्रीरंगम में, बद्रीनाथ में देवताओं का कुछ समय होता है, वो देवता आके अपने समय में भगवान की सेवा करते रहते हैं। बद्रीनाथ की सेवा 6 महीने बंद होने के बाद देवता लोग सेवा करते हैं, उडुपी में 7:30 बजे आधा घंटा देवता लोग सेवा करते हैं, श्रीरंगम में भी उनका मॉर्निंग दर्शनार्थी के पहले आधा घंटे का समय होता है, वो गुप्त रूप में देवताओं का समय है। अनवसर काल में देवता भी भगवान की सेवा करने के लिए अंदर नहीं आ सकते, इतना ये गंभीर काल है, सारे जगन्नाथपुरी वासियों के लिए बहुत दुख का समय है कि भगवान बीमार हैं, जैसे सब रानियां परेशान हैं, भगवान को हेडेक हो रही है ना। तो अभी क्या क्या होता है, एक से पांच दिन, वन अभी एक दिन शुरू हो गया ना, अभी एक से पांच दिन तक क्या होता है, एक डॉक्टर आता है डाइटिशियन, और वो देता है प्रिस्क्रिप्शन कि आपको पांच प्रकार के फल खाने हैं, तीन प्रकार का लिक्विड पीना है कषाय वषाय बना के, और कोई पका हुआ खाना नहीं खाना है, छप्पन भोग तो खाना का भूल ही जाओ आप, काढ़ा बना के बता देते कैसा ऐसा काढ़ा पीना है। तो पांच दिन तक भगवान जगन्नाथ ये फॉलो करते हैं, फिर भी कहते हैं अभी गर्मी हो रही है क्या करूं, तो फिर वापस वैद्य आते हैं और कहते हैं छः सात आठ तीन दिन के लिए अलग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि तिल के तेल में बना हुआ एक तेल है जिसमें चंदन डालते हैं और 20 प्रकार की जड़ी बूटियां डालते हैं, उसको कहते हैं फुलुरी तेल। ये तेल जो है वो एक ही परिवार बनाता है, लेकिन एक साल पहले बनाकर उसको जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं और इस समय छठवें दिन उसको पिछले साल वाला बाहर निकाल कर मंदिर में भेज देते हैं। कम से कम 500 लीटर तेल होता है वो, चंदन घिसाई से चंदन का बना हुआ और 14-20 जड़ी बूटियाँ से बना हुआ ये फुलुरी तेल बहुत अति अति सुगंधमय होता है। मुझे कई बार प्राप्त हुआ है ये अति अति सुगंधमय, हाथ पर इतना पूरा दिन टिकता है उसका स्मेल। है तो तिल तेल, लेकिन तिल तेल में गुण है, हमारे आयुर्वेद आचार्य बताते हैं डॉक्टर निर्मल चंद्र प्रभु कि वो वात पित्त और कफ तीनों को शमन कर देता है, उसमें तेल बनता है। और ये तीन दिन में पुजारी लोग जो चीफ पुजारी हैं उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्नान कराते हैं, स्नान, और वो कहते हैं कि 7 दिन के बाद भी उनके शरीर से वो सुगंध निकलती है, कितना भी साबुन लगाओ, इतना सारा तेल जो बहता है उसको इकट्ठा करके करके वो जमा करके लोगों को प्रसाद के रूप में देते हैं। इसके बाद भी भगवान को लगता है कि भी ठीक नहीं लग रहा है, फिर डॉक्टर आते हैं 9वें दिन तो भगवान को अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लेकिन अभी भी तकलीफ है, लेकिन एक नई कंप्लेंट आती है कि भगवान को पेट में दर्द हो रहा है, 56 भोग खाने की आदत और अभी केवल जड़ी बूटियों का रस पी रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। तो उनको वैद्य जो है वो 9वें और 10वें दिन में दशमूल काढ़ा और मोदक देते हैं, दशमूल बहुत प्रसिद्ध है आप जानते हैं ना, तो दशमूल 2 दिन खाते हैं। 11वें दिन भगवान बढ़िया अच्छे होते हैं, मतलब अच्छी तरह से बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। अभी जो जितना 5 प्रकार के फल और जड़ी बूटियां और जूस और दशमूल जो भी आपने उनको भोग लगाया है वो सारा 12वें दिन जो है वो इकट्ठा करके बड़े ही जुलूस में इन बिग प्रोसेशन वो राज महाप्रसादी के रूप में राजा के महल में पहुंचता है। आपको पता है राजा का महल कहाँ है, जगन्नाथ मंदिर के बाहर निकलते ही स्नान वेदी की जगह है, वहीं चलेंगे तो चैतन्य मठ है ना, चैतन्य मठ के बिल्कुल सामने एक सफ़ेद रंग का महल है वो राजा का महल है। लक्ष्मी देवी है ना गुस्सा करके थक थक करके आते हैं ना बाहर, वहीं से आती है हर साल, आप देखेंगे एंड में रथ यात्रा लौट के आती है ना तो जगत लक्ष्मी आती है, थोड़ी गालियाँ वालियाँ बकती है घूमती है। नहीं नहीं, हेरा पंचमी वो 5वें दिन में वहाँ पर होती है, जब बवड़ा यात्रा में आते हैं ना तो वहाँ जब पहुँचते तो लक्ष्मी देवी दोबारा आती है क्रोध में, कहते हैं अभी दिखाती हूँ आपको, फिर क्या करती है दरवाजा मुँह पे बंद कर देती है, उसका ऐलान करने के लिए आती है, वो राजा के सामने आती है और अंदर गुस्से में चले जाती है। एनीवेज तो राजा के उस महल में वो सारा जो 15 दिन का जो भोजन किया हुआ जड़ी बूटी जो भी कुछ है वो पहुंचा जाता है, और राजा फिर उसको सारे सेवकों को थोड़ा थोड़ा दवा जो ही है जो भी कुछ है वो बांट देते हैं, उसको कहते हैं महाऔषधि। और ये ग्रहण करने के बाद ऐसा शास्त्र में प्रमाण है उनके कि हर प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है। इस प्रकार से भगवान का 14 दिन समाप्त होते हैं। अभी वो बिल्कुल चंगा हो गए हैं, इंडोर में थे, कुछ बाहर का कुछ दिखाई नहीं दिया, भक्तों का दर्शन नहीं हुआ, प्रसाद नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, तो वो अपने पुजारी को बताते हैं मुझे अभी बाहर जाना है, लक्ष्मी को कहते हैं मैं 2 दिन जरा घूम के आता हूँ, अंदर रह के परेशान हो गया मैं। तो उसके लिए उनको सजाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको नेत्रोत्सव। रथ यात्रा ये आषाढ़, मैंने पहले गलत बताया आपको, आषाढ़ द्वितीया को रथ यात्रा होती है, उसके 15 दिन पहले की बात है ये। स्नान यात्रा पूर्णिमा को होती है, कौन से ज्येष्ठ पूर्णिमा को, और ज्येष्ठ पूर्णिमा प्रथमा से लेकर चतुर्दशी तक की लीला चलती है, और फिर अमावस्या आती है, फिर आषाढ़ शुद्ध प्रथमा प्रतिपदा के दिन नेत्रोत्सव होता है। भगवान बड़े सज धज कर उनको पेंट करते हैं, बड़ा डेकोरेट करते हैं, सारा सामान तैयार करते हैं उनको, और फिर रथ यात्रा आरम्भ होती है। तो ये है जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु दुखी है, अंदर सब लीला हो रही है, महाप्रभु को दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो भाग के यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से ये हलालनाथ की लीला है। मेरा विचार है कि मैंने सब कुछ कवर किया होगा, फिर भी एक बार देखना अच्छा है। वो नोटबुक दीजिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की, हलालनाथ भगवान की। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है, गोपी बाब विरहे प्रभु वाकल व्याकुल होइना, हलालनाथ गेला प्रभु सबरे छाड़िया। भक्ति रत्नाकर में इसके बारे में वर्णन दिया है। देखा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, देखा पैठा ग्रामे नाम अति सुशोभित, पैठा नाम होइला याइचे कहिए किंचित, रासे कृष्ण अंतर्धान होइला एवने, कृष्ण अन्वेषण कोरी फिरे गोपी गणे। अन्वेषण का मतलब है शोध की, शोध करना, ढूंढना। तो कृष्ण अन्वेषण, कृष्ण को ढूंढे ढूंढे सब गोपियां घूम रही है, वहीं रास में कृष्ण अंतर्धान हुए और गोपियों को व्याकुल बना दिया। एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रेमशिला को लाया गया उनका नाम है भगवान दास। 1918 में ये राधाकांत मठ जो जगन्नाथपुरी में उसके प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने अपने भक्तों को लाकर यहाँ पर शिला लाई। उनका नाम लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो जंगल में पड़ी रहती है, किसी को पता नहीं चलता, तो उन्होंने यहाँ पर लाया उसको। सारा पहाड़ तो अदृश्य हो गया ना, एक ही शिला महाप्रभु के प्रभाव से वैसे ही रही, कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो, क्योंकि उसमें प्रेम का आविर्भाव हुआ था। तो वो उन्होंने लाई यहाँ पर, और उन्होंने ही उनके सामने जो छठबुक गौरव का मंदिर बनाया। वे लास्ट बात यह है कि ये प्रूफ कैसा है कि ये विष्णु भगवान स्वयं कृष्ण है, क्योंकि इनके जो जितना भी भोग लगता है ना, तो उसमें गोपीनाथ, गोपीजन वल्लभ, यही सब कृष्ण मंत्रों का उच्चारण होता है। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जो भोजन में उपयोग आता है। कृष्ण गोपीजन वल्लभाय, बोलो कृष्ण गोपीजन वल्लभाय नमो नारायण हलालनाथाय नैवेद्याय स्वाहा। सो कृष्ण के भाव से यहाँ पर होता है, लेकिन पता नहीं है कि ये कृष्ण है। चतुर्भुज नारायण के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण के भाव में यहाँ पर रहते हैं कृष्ण, और महाप्रभु को दर्शन भी देते हैं, और हम लोगों को भी हमारे आचार्य बताते हैं कि ये चतुर्भुज नारायण जरूर है, लेकिन महाप्रभु ने इनको सदैव द्विभुज मुरलीधारी रूप में दर्शन किया था। यस, बोलो जोर से बोलो। मैं भूल गया उसने, आप बता सकते, बताओ ना, बताओ कोई बात नहीं, बताओ। प्रभु जी को एक कथा याद आ रही है, बता रहे लाउडली। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ओके, कभी याद आई, मुझे लगा वो यहाँ की कथा है, लेकिन वो कथा जो है वो गोवर्धन की कथा है, कि कैसे एक बार एक भक्त थे, उसका नाम था क्या नाम था, एनीवे वो अष्ट छाप में से एक है, नाम आएगा, याद आएगा। वो सूरदास और वल्लभाचार्य के दो शिष्य थे, गोकुलनाथ और विठ्ठलनाथ, ये दो पुत्र थे उनके, चार चार शिष्य थे। हाँ, कुंभनदास उनका नाम है, कुंभनदास, उसमें से एक थे कुंभनदास। उनको वो भगवान कृष्ण की जो बाल लीला का जो उनका इच्छा था ना, वो कहते पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए वो अष्ट छाप के साथ वापस श्रीराज जी के रूप में प्रकट हुए, अपनी साकिल्ला की जो उनकी प्यास थी उसको पूरा करने के लिए। और सूरदास और चित्तस्वामी परमानंद जी, गोविंद दास जी, परमानंद दास जी, सब ये प्रकट हुए उनके साथ में। तो एक थे कुंभनदास जी, वो बहुत ही वृद्ध थे, और नंद बाबा की तरह उनको भी वृद्धावस्था तक संतान प्राप्त नहीं हुई थी, और कृष्ण भगवान साक्षात रूप में उनके साथ लीला करते थे। तो एक बार आए रात को, कुंभनदास सो रहे थे, विवाह तो उतना हो गया था, लेकिन बूढ़ी पत्नी थी, उनको जगाया श्रीनाथ जी ने, बोला उठो उठो। वो उधर गोवर्धन के बीच में ना एक माता जी रहती है, बहुत बुढ़िया है, और कई साल से जब मक्खन बनाती है तो वो प्रार्थना करती है कि कन्हैया मेरे घर में आए, कन्हैया मेरे घर में आए। अभी ये समय कृष्ण लीला का नहीं है, ये श्रीनाथ जी का, मतलब क्या वल्लभाचार्य अपने माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया, उसके बाद वल्लभाचार्य को रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको दिया, ये उसके बाद की, आज से केवल 400 साल पहले की बात है। तब कुंभन दास भी है और कृष्ण उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, लीला कर रहे हैं। तो कृष्ण उनको बता रहे हैं कि गोवर्धन के पास में एक माता है बुढ़िया, वो रोज मक्खन बनाते समय मुझे बुलाती है, आओ आओ, और मुझे उसको पूर्ण करने की इच्छा है, मक्खन उसका खाने की इच्छा है, आप मेरे साथ चलो। तो कुंभन दास कहते हैं मैं तो बुढ़ा हूँ, तुम तो जवान हो, और जब आखिर में पकड़ने का समय आता है तो आप तो भाग जाते हैं और मुझे पकड़ लेते लोग, मैं बुढ़ा हूँ, भाग नहीं सकता इतने तेजी से तुम्हारे जैसा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट, मैं आपको लेके जाता हूँ। रात को, बीच रात में कुंभन दास को लेकर ना उस बुढ़िया के छत पे चढ़े भगवान। आप सोच सकते हैं कोई बुढ़ा आदमी किसी के छत पे चढ़ रहा है? वो कौल बोलते, कौल क्या बोलते हैं उसको, कवर होता ना छत, छत वो निकालते हैं उसको, होल बनाते हैं, कौला कौला, उसके अंदर से भगवान इसको भी कूदवाते हैं और खुद भी कूदते हैं। और वहां पर अंधेरे में एक मटका लटक रहा है उस पर, अब ये नीचे बैठे हैं तो ये तो बूढ़े हैं ना, नीचे बैठे हैं देख रहे हैं, और वो लटक जाते हैं उसके ऊपर, एक हाथ से मटके पे लटक रहे हैं और दूसरे हाथ से माखन खा रहे हैं। और कुंभन दास जी उसको देख रहे हैं, आपको ये पकड़ना पड़ेगा, आपको भैया इससे पकड़ो, इसको इसको पकड़ो, ये इस लेफ्ट हैंड में पकड़ो, और ये आपने हाथ पकड़ो, अभी देखो आप सबको सीन मान में आ रहा है ना, अंधेरे का समय है लेकिन भगवान स्वयं प्रकाशित भी हैं, मटके पे लटक कर दूसरे हाथ से खा रहे हैं, एक ग्रास खाया दूसरा खाया और नीचे से पकड़ो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खा रहे खा रहे। उतने में उनकी जो छोटी धोती है वो छूटने लगती है, पीछे का होता ना हमारा पुरुषों का होता ना, वो डालते ना पीछे, क्या बोलते हैं उसको, सोगा बोलते हैं उसको, डालते पीछे, वो लटकने की वजह से छूटने लगा। अभी भगवान को माखन खाने की प्रक्रिया में कोई अवरोध बाधा नहीं चाहिए, अभी उसको ठीक करने जाएंगे तो वो मक्खन लगाए वो धोती को लगेगा, वो मुंह में जाना चाहिए और दूसरा हाथ छोड़ नहीं सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने हाथ से माखन खाते रहे खाते रहे खाते रहे, कंधे में से दो भुजाएं निर्माण की उन्होंने, वो भुजाएं पीछे गई, फिसलता हुआ धोती को टक किया अच्छी तरह से, फिर वो अदृश्य हो गए। और ये सारा दृश्य जो है वो कुंभन दास जी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इनको परेशानी हो रही है, कैसे करे कैसे करे, अचानक दो हाथ निकलते हैं, वो धोती को ठीक करते हैं, वापस गायब हो जाते हैं। तो ये दृश्य देखो भाव विभोर हो गए। इतने में वो बुढ़िया जगी, खाड़कुट खाड़कुट हुआ रहेगा कुछ, जैसे आई तो भगवान तुरंत वो होल से बाहर निकल गए, और मिला कौन, बुड्ढा मिला, उसको बहुत पीटा उसने, और ठाकुर जी अदृश्य होकर तालियां पिट रहे, अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ, अरे 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 तुमने तो मुझे कहा तो तुम बचाओगे और मैं तो आपके भरोसे आया था, लेकिन हमेशा की तरह मैं ही पीट रहा हूं और तुम हंस रहे हो। और बुढ़िया को लग रहा है कि ये पागल भी है और चोर भी है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। इसके बाद कैसे भी छुड़ाया अपने आपको बुढ़िया से और घर पे आया। कहते उसी के बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, क्योंकि उसी चतुर्भुज के दर्शन के भाव में वो मग्न था, दिन रात उसी भाव में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और जो बालक हुआ उसका नाम रखा चतुर्भुज दास। और कहते ये भी अष्टछाप में से एक थे, इनको भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन था, नित्य रूप से जगन्नाथ जी सॉरी श्रीनाथ जी महाराज उनको दर्शन देते थे, उनके साथ खेलते थे, क्या क्या नहीं करते थे। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, है ना, माइक भी आ गया है, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, माइक तो आ गया ना। एक बार ये जैसे ही आते थे मंदिर में चतुर्भुज दास, अभी छोटे उम्र के पिताजी बड़े हैं, तो इनको खास खेलने के लिए विग्रह छोड़कर जगन्नाथ जी अपना श्रीनाथ जी बाहर आते थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे, इसके साथ खेलते थे और ये अकेला उनके साथ बातें करता था, नाचता था कूदता था। तो सब लोग कहते थे कुंभना को बालक पागल है, मंदिर में आकर क्या बकते रहता है समझ में नहीं आता किसी, लेकिन बालक है ठीक है, बालकों का ऑल थिंग्स आर ओके। एक दिन भगवान आए और बोले चतुर्भुज घोड़ा बन जा, मुझे आज घुड़सवारी करने की इच्छा है। अभी केवल उसको ही दिखाई पड़ रहा है श्रीनाथ जी महाराज गोपाल जी, और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये घोड़ा बन गया और भगवान सवार हो उसके ऊपर, ऊपर से बिल्कुल बकायदा ढंग से नियम से ठहर 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 कर रहे हैं और पूरा मंदिर में उसको घुमाया, लोग देख रहे हैं अरे बच्चा है थोड़ा सा पागल है लेकिन पूरा अभी घोड़ा बनकर सब खेल रहा है। बहुत देर तक भगवान ने घुड़सवारी की, कुंभन दास का ब्लैडर फुल हो गया, बहुत देर तक भगवान ने घुमाया, तो वो कह रहा है अरे ठाकुर जी मुझे जाना है लघु शंका के लिए। तो वो सुनते ही नहीं है, जोर से बोले अरे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो बोले घोड़ा हो घोड़े की तरह करो। अभी क्या करे, वो करना नहीं था लेकिन इतना वेग इतना हुआ तो अभी दौड़ा भी रहे हैं और धार भी निकल रही है, पूरे मंदिर में पूरी धार ही धार है। तो लोगों ने कहा अरे यहाँ तक तो ठीक था, बालक बन जो है नटखट है सब कुछ है, लेकिन मंदिर में अभी ये पेशा पर है, बहुत अति हो गया। तो उसने उसको पीटना शुरू किया, तो सुनाथ जी उसमें से उतर गए और तालियां पीट पीट के हंस रहे हैं, और लोग वो पेशाब भी कर रहे हैं और उसको पीट भी पीटा भी जा रहा है। लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे उस समय कि कुंभना बस अभी हो गया तुम्हारा बालक का ये नाटक जो है बस हो गया, अभी कल से तुम्हारे बालक को मंदिर में आना बंद, अब तक तो सही था उसका। और कुंभना को बुलाया गया, कंप्लेंट किया गया और उसको पकड़ के बालक को दिया गया, अभी ये बालक को इधर एंट्री नहीं देना चाहिए। कुंभना को बड़ा दुख हुआ और चतुर्भुज भी रो रहा है कि मुझे मंदिर में आने को नहीं मिलेगा। भगवान बड़े नाराज हो गए। रात को शयन करने का समय आया तो वो विट्ठलनाथ जी को जो पुजारी थे उस समय बता रहे उनको कि देखो आपने जो किया वो अपने नियम सही किया, लेकिन चतुर्भुज मेरा दोस्त है, सखा है मेरा, वो मैं उसके साथ खेलता हूँ, मैंने उस पर घुड़सवारी की थी और मैंने कहा था करो, उसे मंदिर में आने को मना मत करना, मैं सब भोग आना मना सब त्याग कर दूंगा। तो फिर वो आदर के साथ गए कुंभना के घर पे, और कुंभना के घर जाकर उन्होंने बहुत विनती की, क्षमा मांगी कि भगवान ने स्वयं बताया कि मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसका सखा हूँ। वो फिर वापस, और ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं जो यहाँ पर कथा में बोल नहीं सकते हैं, क्या क्या भगवान ने उनके साथ किया। लघु शंका के बाद में और ही होता ना वेग, एक उस वेग में भी लीलाएं उनकी। हाँ तो ये जो कथा है वो मूर्ति उसकी नहीं है प्रभु जी, तो चतुर्भुज भगवान का स्वरूप उसने देखा लेकिन जो कृष्ण थे। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान कितना भी अपना ऐश्वर्य बार बार वृंदावन में दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो अपने ऐश्वर्य को टिका नहीं सकते। यशोदा माई के सामने करते हैं तो वहाँ पर पिघल जाता है, वहाँ पर समाप्त हो जाता है ऐश्वर्य, गोपियों के सामने भी खत्म हो जाता है, सखाओं के सामने भी समाप्त हो जाता है। वृंदावन भूमि माधुर्य की भूमि है और वहाँ पर किसी प्रकार का ऐश्वर्य भगवान प्रयास भी करते हैं तो गोपियों के और ब्रजवासियों के प्रेम के सामने वो टिक नहीं सकता है। कौन से विवरण की बात कर रहा है? ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।